कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय सत्संग यहाँ कृष्ण मंदिर रानी भाग में कृष्ण गोपाल सूरी और परिवार ने अपनी माता की स्मृति में रखवाया और आप सब श्रद्धालु प्रतिदिन हरि कथा में हरि कीर्तन में भाग लेने के लिए पधारते हैं, आपका स्वागत स्वागत करते हैं। इस परिवार का और इस मंदिर के संचालकों और ब्राह्मणों का धन्यवाद करते हैं कि अच्छी व्यवस्था में हरि कथा और हरि कीर्तन जो मंदिर का मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करने का अति उत्तम कार्य कर रहे हैं। कल श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में हमने ध्रुव महाराज का चरित्र, 5 वर्ष का बच्चा भी भगवान को पा सकता है, ये बहुत बड़ा आश्वासन है वैदिक सनातन धर्म में कि छोटा बच्चा भी भगवान को पा सकता है। माता देवहूति कपिल देव से दिव्य उपदेश को प्राप्त करके वो भी भगवत धाम को पा सकती है। तो सबके लिए भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है और सबको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ये भागवत में सबको निमंत्रण है, आइए भगवान के शरण में भगवान के चरणों का आश्रय ले लीजिए और भगवान के नाम का जीवन में जप करने का नियम बनाइए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान के भक्ति को प्राप्त करना सुलभ और सरल हो जाएगा। असल में स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो पहला पुरुष और स्त्री इस धरती के ऊपर ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उनके दो पुत्रों में उत्तानपाद के वंश का वर्णन चौथे स्कंद में हमने सुना। उत्तानपाद का वर्णन चौथे स्कंद में हमने सुना ध्रुव महाराज से लेकर और प्राचीन बरहित और प्रचेताओं तक, और उनकी एक पुत्री देवहूति का वर्णन तीसरे स्कंद में सुना, जिसका पुत्र भगवान कपिल देव प्रकट हुए और नौ कन्याएं जो ऋषियों को विहाई गई, जिससे हमारे गोत्र और हमारे पूर्वज का संसार के अंदर जन्म हुआ। आज पांचवें स्कंद में स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का वंश, तो दो पुत्र थे स्वयंभू मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन पुत्रियां थी आकुटि प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति का हो गया, आकुटि का भी वर्णन हुआ, प्रसूति का भी वर्णन हुआ। तो अब जब मनु महाराज ने देखा कि मेरे पुत्र उत्तानपाद छोटा था, उसके वंश ने अपना कार्य पूरा किया, लेकिन ये मेरा दूसरा पुत्र बड़ा प्रिय व्रत, जिसका व्रत बहुत जीवन में प्रिय है, उसने कौन सा व्रत ले रखा था नारद जी के आश्रम में और संन्यास दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा था कि मुझे संसार में जाना ही नहीं है। तो पिता स्वयं वो मनु ने जाके कहा, बेटा अब कौन राज करेगा, हमको भी तो तपस्या करने जाना है। बेटे ने कहा, नहीं नहीं, हम तो संसार में फंसना नहीं है हमको। तो स्वयंभू मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी को जाके कहा कि हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया और संसार में सृष्टि की, पर हमारा पुत्र प्रियव्रत हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए, हंस ब्रह्मा जी का वाहन है और ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि बेटा सत्य तो ये है कि इस संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है। जैसे बैल कोई भी न हल में जुतना चाहता है, न गाड़ी को खींचना चाहता है और न ही अनाज को अलग करना चाहता है, लेकिन नाक में रस्सी डाल के उसको जैसे हिला चलाते ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे देवताओं से लेके मैं, ब्रह्मा से लेके अन्य सारे देवता भगवान के नियंत्रण में है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो बेटा आपको पिताजी के आज्ञा के अनुसार राज शासन को संभालना चाहिए और आप राजा बनने के बाद, ग्रस्त होने के बाद भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और उस वक्त नारद जी भी बैठे थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो प्रियव्रत ने कहा है कि ब्रह्मा जी वेद का आचार्य है, ये वेद के वचन है, और मनु जी स्मृतियों के आचार्य है, मनु स्मृति के। तो वेद और स्मृति के दोनों जो आचार्य हैं उनका आदेश है, तो इनको इनकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरुदेव नारद को प्रणाम किया और नारद से आज्ञा मांगी और महाराज प्रियव्रत इस भूमंडल के राजा बने। और पांचजन्य प्रजापति की पुत्री से के साथ उनका विवाह हुआ, उनको 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उनमें से 3 तो हो गए साधु सन्यासी, दुनिया में फंसे ही नहीं, लेकिन बाकी 7 जो थे उनको 7 द्वीपों का राज दिया। महाराज प्रियव्रत की एक विशेषता ये है कि उन्होंने बोला कि दिन को तो हम काम करते हैं, रात को सब सो जाते हैं, रात को कोई कर्म नहीं हो सकता है, यज्ञ नहीं हो सकता है, तो मैं रात को दिन में बदल दूंगा। और वो अपने रथ के ऊपर चढ़ के जैसे सूर्य घूमता है सुमेरु पर्वत के चारों ओर, वो भी ऐसे घूमने लगे लेकिन उल्टे तरफ घूमे, जब दुनिया जब सूर्य के चलने से रात हो तब वो दिन कर दे। तो रात को दिन में बदल दिया महाराज प्रियव्रत ने। ये हुआ उनका काल के ऊपर विजय, जो गुरु के आश्रम में नारद के आश्रम में रहकर और इतना शक्तिशाली साधन करके आए थे, रात को दिन में बदल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रात भी आराम करने के लिए है, अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो उनके रथ के पहियों से धरती के अंदर 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने और 7 द्वीपों का राज अपने पुत्रों को दिया। उनमें से एक द्वीप जिसमें हम रहते हैं उसको कहते हैं जम्बू द्वीप, उसका राज उन्होंने अपने पुत्र जिसको दिया वहां से वंश चला है जम्बू द्वीप के महाराज जो प्रियव्रत का पुत्र हुआ आगे। और प्रियव्रत महाराज फिर वापस राजपाट को छोड़कर नारद जी के आश्रम में गए और वहां जाके उन्होंने नारद के शरण में बैठ के फिर वही सन्यास दीक्षा लेके अपने जीवन में भगवान की भक्ति शुरू की। उनका पुत्र अग्निधर जो जम्बूद्वीप का राजा हुआ जिसमें हम रहते हैं, उसके लिए ब्रह्मा जी ने अप्सरा भेजी पूर्वचिति, उसके साथ उसने प्रेम किया और उसके यहां कोई एक पुत्र हुआ नाभि नाम का। और नाभि महाराज जब राजा बने तो नाभि को पुत्र संतान नहीं थी, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए और नाभि के पुरोहितों ने कहा कि भगवान आपके प्रकट होने के बाद कुछ मांगना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा ये यजमान आप जैसा पुत्र मांगता है। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई और होता नहीं है, अब मैं स्वयं ही नाभि के घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो आगे चल के प्रियव्रत के वंश में नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का प्रकट्य होता है। वैसे ऋषभ उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और ऋषभ उसको कहते हैं जो अपने ज्ञान से प्रकाशमान हो, किसी और से प्रकाश लेने की आवश्यकता न हो। तो महाराज ऋषभ देव बहुत बड़े गुरु के आश्रम में शिक्षा भी ग्रहण की, लेकिन विवाह की यहां प्रवृत्ति मार्ग के अंदर 100 पुत्रों को जन्म दिया, धरती का बहुत सुंदर राज चलाया। विवाह करने की जब वर्णन आता है तो ऋषभ देव जब राजा बने तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, तो ऋषभ देव ने अपनी योग अग्नि से बरसात कर दी, योग के बल से बरसात कर दी, तो इंद्र को आश्चर्य लग गया। उस वक्त इंद्र था यज्ञ आकुटि का पुत्र, प्रजापति रुचि का पुत्र उस वक्त इंद्र था, वो भगवान का अवतार है असल में। कभी कभी इंद्र के योग्य आदमी नहीं होता है तो भगवान इंद्र के पद के ऊपर स्वयं आ जाते हैं। उस वक्त यज्ञ इंद्र के पद के ऊपर था और उनकी बेटी जयंती का विवाह करना था ऋषभ देव के साथ, तो उन्होंने अपने जामाता की परीक्षा ली और बड़े प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह जयंती का ऋषभ देव के साथ कराया। और ऋषभ देव को 100 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है, और उनका सबसे बड़ा पुत्र जो है उसका नाम महाराज भरत, जिसके नाम से ये अजनाब वर्ष, जिसको पहले अजनाब वर्ष कहते थे, इसका नाम भरत वर्ष हो गया। पहले भारत वर्ष नहीं था इसका नाम, इसका नाम था अजनाब वर्ष। जब से महाराज ऋषभ देव के पुत्र भरत राजा बने तब से इसका नाम हो गया भरत वर्ष। तो भारत तीन, हमारे वैदिक संस्कृति में 3 भारत महान कहे गए हैं। एक भारत भगवान श्री रामचंद्र का भ्राता, और ये तो भगवान विष्णु का अंश अवतार ही है जो भक्ति का बहुत सुंदर त्याग और भक्ति की मूर्ति है, त्याग और वैराग और भक्ति की मूर्ति है भरत जी। और दूसरे भरत ये ऋषभ देव के पुत्र है जिसके नाम से ये पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष का नाम दिया गया है। और तीसरा भरत जो है वो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत है, जिसके वंश के अंदर पांडु हुआ है और अर्जुन को भगवान भरतवंशी कहते हैं, वो शकुंतला का पुत्र भरत है। तो ये तीन भरत, वैसे भरत का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, जो पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, उसको भरत बोलते हैं। तो 100 पुत्रों में एक सिद्धांत बहुत अच्छा समझना चाहिए कि 100 पुत्र महाराज ऋषभदेव के, उसमें 81 पुत्र कर्म कांड के ब्राह्मण बने, बड़े विद्वान बने, यज्ञ आदि कराने वाले। 9 उसमें से 9 योगेंद्र बने, साधु सन्यासी, दुनिया में फंसे नहीं, नारद और 4 कुमारों के समान, जो 11वें स्कंद में निमी महाराज के यज्ञ में जाके उपदेश करते हैं। शेष 10 क्षत्रिय बने शासन करने के लिए। तो एक सिद्धांत ऐसा महाराज भरत के जीवन से स्थापित होता है कि जन्म से एक ही बाप के कुछ पितृ ब्राह्मण बने, कुछ सन्यासी बने और कुछ राजा महाराजा क्षत्रिय के कर्म को कर लिया। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा उस वर्ण का मतलब, किस चीज को वर्ण कर लेना, तो जो काम को वर्ण करता है उसी से उसकी पहचान होती है। और एक दिन महाराज ने अपने 100 पुत्रों को लेकर ब्रह्मावर्त में, ब्रह्मावर्त कहते हैं धरती का जो केंद्र है, जहां धरती का सेंटर है, केंद्र है, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। वैसे कहीं कहीं ऐसे मिलता है कि बिठूर जो कानपुर के पास स्थान है गंगा जी के तट पे, वो ब्रह्मावर्त है, जहां लव और कुश का जन्म हुआ है, सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में वहां रही थी, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। और गंगा जी के तट पे ऋषियों के बीच में महाराज भरत ने अपने 100 पुत्रों को जो उपदेश दिया वो बड़ा अद्भुत उपदेश है। पहला उन्होंने कहा, बेटा मानव जन्म में पशुओं की तरह इंद्रियों के पीछे भागना ये तो कूकर सूकर गधे के जैसा है, इसमें तुच्छ सुख है। आपको असल में दिव्य तपस्या करके अनंत ब्रह्म सुख की खोज करनी चाहिए। तो मानव जन्म में ब्रह्म सुख, जो आध्यात्मिक सुख है, जो अनंत है, जो कभी कम होता नहीं है, उसके पीछे, उसके लिए प्रयास करना है। इंद्रियों का सुख तो कुत्ते बिल्ले सुअर की झुंडी में मिल जाता है, तो उसके लिए मानव जन्म क्यों बेकार बिगाना। तो दिव्य तप करो बच्चों। और फिर ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि उसको पिता होने का अधिकार नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगा के जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं करा सकता। उसको पति होने का अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी को सतमार्ग के ऊपर नहीं चला सकता। उसको गुरु होने का अधिकार नहीं है जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करा सकता। और राजा होने का अधिकार नहीं है अगर प्रजा को धर्म के मार्ग पर नहीं चला सकता। तो ये ऋषभदेव महाराज की जो शिक्षाएं हैं, ये बड़ी अद्भुत शिक्षाएं हैं। और फिर ऋषभदेव महाराज अपने 10 पुत्रों को राज दिया, उनमें से महाराज भरत इस भारतवर्ष के राजा हुए। और ऋषभदेव महाराज तपस्या करने के लिए चले गए और जंगल के अंदर ऐसे रहने लगे जैसे अवधूत हो। अवधूत का मतलब कोई नेम नहीं, जैसे जैसे कोई उसको कहते अजगर की वृत्ति से रहने मिले, कुछ खाने को मिले तो खा ले, नहीं मिले तो नहीं मिले। और फिर भी वो भगवान का अवतार है, ऋषभदेव दिव्य शरीर है और सब जगह सुगंध ही, उनके मल से भी 40 कोस तक सुगंध जाए ऐसा वातावरण था। और फिर एक समय में वो पत्थर मुख में डाल के और केरल के तरफ आगे वन के अंदर आग लगी और उसके अंदर उन्होंने अपना जो है लीला को समाप्त कर लिया। उस ऋषभदेव के बाद कुछ महाराज वहां कूटक के अंदर अहरण महाराज था, उसने फिर जैन पंथ को शुरू किया। वहां से जैन पंथ ऋषभदेव के, क्योंकि ऋषभदेव ऐसे रहते थे कहीं का लेना नहीं खाना नहीं, बहुत कठोर तप किया था, तो वहां से जैन जो है पंथ शुरू हुआ। तो ऋषभदेव महाराज के बाद महाराज भरत राजा हुए, जो महाराज भरत का राज का बहुत बड़ी महिमा है। और वो अपने पुत्रों को राज देकर यहां से, तब तो नेपाल अलग राज नहीं था, नेपाल में पुलह ऋषि का आश्रम है, सप्त ऋषियों में एक ऋषि है पुलह ऋषि। और वहां नदी बहती है, उसका नाम है गंडकी नदी। और उस नदी के अंदर जो ऊपर से पत्थर आते हैं उनको सालंगराम कहते हैं। और सालंगराम की पूजा तो सारे ही वैष्णव संप्रदाय में होती है और हर ब्राह्मण के घर में तो शालंग राम का पूजा होना ही चाहिए। तो उस नदी के किनारे पे ऐसा पूजा में मगन तीन बार स्नान करे और भगवान की पूजा में इतना तलीन रहे कि बहुत बड़ा साधन कर रहे थे। एक दिन नदी के किनारे नहा रहे थे, अचानक देखा एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई थी, पीछे शेर धाड़ा और हिरणी ने जोर से छलांग लगाई। दूसरे तरफ गिरते ही हिरणी का प्राण निकला, लेकिन उससे पहले उनका बच्चा जल में ही गिरा। महाराज ने उसको पकड़ लिया और महाराज ने जैसे पकड़ लिया तो उसके ऊपर दया का भाव आया और उस बच्चे को आश्रम में लेकर आए। अब हिरण का बच्चा था, हिरण मर गई थी और उस बच्चे को आश्रम में लाए और उस बच्चे को बचा लिया, ये तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन फिर उस बच्चे के साथ वो छोटा सा बच्चा था, उनके पास आके बैठता था, उनको खिलाते उनको पिलाते, फिर उनका ध्यान रखते, फिर वो उनके पीछे आके उसके पास आके उनको चाटने लगता। तो अब पूजा वाले काम से हिरण के बच्चे को संभालने वाला काम ज्यादा हो गया। दया किसी के ऊपर करना अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति उसमें हो गई तो बंधन पड़ जाता है। अब एक दिन महाराज भरत, वो हिरण कहीं दूर चला गया, वापस आया नहीं। वैसे पशु है, जब तक बच्चा है आपके पास रहेगा, बड़ा होगा तो पशुओं के अंदर रहेगा, आपके साथ तो नहीं रह सकता है। वो कहीं चला गया, महाराज उसको ढूंढते हुए रात पड़ गई और किसी पहाड़ की चट्टान से नीचे हिरण देखा, ऐसे लगा कि वो हिरण का ध्यान में नीचे गिरे और शरीर छूट गया। दूसरे जन्म में महाराज भरत को हिरण के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। इसको बोलते हैं अंत मति सो गति। अंत समय जिसका ध्यान करते हैं, जैसा भाव होता है वैसा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए अंत समय भगवान कैसे याद आ जाए, ये मानव जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अंत समय भगवान याद आ जाए। वैसे अपने आप बहुत लोगों को नहीं आ सकता है, इसलिए भगवान के भक्तों के साथ मैत्री और अच्छा संबंध रखना जरूरी है कि उस वक्त वह चारों ओर आके बैठ के भगवान का कीर्तन करके, भगवान की कथा सुना के, भगवान की याद दिलाएं। हम अपने आप नहीं भी कर सके तो असल में सारे जीवन में सबसे दुर्लभ जो चीज है वो है भगवान के भक्तों का संग। अगर किसी को कोई चीज नहीं मिली तो दुखी हो जाएगा, वो है भगवान के भक्तों का संग। और सबसे बड़ा दुख ये है कि भगवान के भक्तों के संग से अलग होना। ये सात दिन आपको यहाँ ऐसे कथा में संग मिल रहा है, आठवें दिन आपको ऐसे लगेगा कि क्या हो गया, थोड़ा ऐसे लगेगा कि ये संग बहुत अच्छा संग है, क्योंकि ये संग में भगवान हमारा केंद्र है। ये कुछ संग में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जन्मदिन पे जाते हैं, वहां केंद्र भगवान नहीं होता है। यहां हमारे सारे सत्संग का केंद्र भागवत है जो भगवान श्री कृष्ण है। जब केंद्र भगवान होता है तो सभी साथ रह सकते हैं, किसी का किसी से वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, झगड़ा नहीं है, क्योंकि केंद्र एक है। इसलिए भक्तों का संग जीवन में दुर्लभ है। भक्तों की मैत्री अंत समय भगवान को याद दिलाने में बहुत सहयोगी है। इसलिए पांच चीजें भक्ति के लिए जो मुख्य महाप्रभु चैतन्य ने कही हैं, उसमें एक और सबसे मुख्य है वो है भक्तों का संग। दूसरा है श्रीमद् भागवत का श्रवण, तीसरा है भगवान के नाम का जप, और चौथा है ठाकुर जी को घर में विराजमान करके और उसका अर्चन करना, और पांचवा है भगवान के धाम में रहना। अब भगवान के धाम में सब रह नहीं सकते, भगवान की पूजा करने के लिए भी संग चाहिए, भगवान का नाम जपने के लिए भी संग चाहिए, कथा सुनने के लिए भी संग चाहिए। इन पांचों में सबसे मुख्य भक्तों का संग। भागवत पुरुष भक्तों का संग मिल जाए तो कथा भी मिलेगी, कीर्तन भी मिलेगा, भगवान का दर्शन भी होगा, ठाकुर जी भी होंगे और वहां भगवान का धाम भी प्रकट हो जाएगा। ये चीजें जहां होती हैं वहां धाम अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इसलिए हिरण के शरीर में जाने के बाद महाराज भरत को अपना भजन नहीं भूला, भगवान का सुमरण नहीं भूला, वो उस हिरण के शरीर में वापस पुलह आश्रम में आए और अपने दिन गिन रहे थे जब वो शरीर छूटेगा। वो शरीर छूटते ही एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तब भी उनका नाम भरत हुआ, लेकिन वो जड़ जैसे रहने लगे। ऐसे कुछ हमारे शास्त्रों में नाम आते हैं जो इस संसार के बंधन में पड़ना ही नहीं चाहते थे, सब कुछ जानते हुए भी पागल जैसे रहते थे। वैसे जड़ कहते हैं, ये टेबल है ये जड़ है, ये तो ये खंभा है ये जड़ है, तो ऐसे रहना जो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक महाराज द्रु के पुत्र उत्कल वो ऐसे रहे, एक महाराज सगर के पुत्र अंशुमान ऐसे रहे, वो दुनिया में फंसना नहीं चाहते थे। ये तीसरा भरत है, ये जड़ भरत है, ये उसका उदाहरण है कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तन कर रही है, हम तो आत्मा है, हमारा इनसे लेना देना नहीं, हम इससे अलग है। ये भगवत गीता का एक श्लोक है, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ चखती है और पांव चलते हैं, आंखें बंद होती है, सोती है, ये तो शरीर और इंद्रियां काम कर रही है, मैं तो आत्मा इससे अलग हूं। वो ये इस स्तर के महात्मा है। तो पिताजी उसको कुछ सिखाते थे तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं था। गायत्री मंत्र 5-10 साल में याद नहीं कर पाया। पिताजी तो जैसे कैसे देख रहे थे, पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद भाई और भाभियों ने उसको कहा कि ये काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, तो वो जो बचा हुआ नीचे का सड़ा हुआ चावल दे दें, कभी सड़ी हुई रोटी दे दें, लेकिन उसको कुछ भी दे क्या फर्क पड़ता है, ये तो ये शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को तो भगवान का सुमरण चाहिए, वो तो आत्मा में रमण करने वाले थे। आत्म तृप्त से आत्म संतुष्ट, आत्मा में तृप्ति, आत्मा में संतुष्टि थी उसको शरीर, फिर भी उसको कहा गैया चराने जाए, वो गैया चराने चला जाता था। एक दिन गैया चरा रहा था तो कुछ डाकू जो देवी की उपासना के लिए नर बलि देनी थी, किसी आदमी को बलि चढ़ानी थी, इसको पकड़ के ले गए और मोटा तगड़ा देखा और ले जाके स्नान करा लिया, ये स्नान कर रहा है, इसको भोजन करा लिया, ये भोजन खा रहा है, और देवी के सामने खड़ा करके और बड़े डाकू ने तलवार निकाल कर अभी इसका गर्दन काट के इसका खून देवी को अर्पण करेंगे। तलवार ऊपर उठाया, देवी अपनी मूर्ति से प्रकट हो गए, उसके हाथ से तलवार लेके डाकू का सर काट दिया और डाकू के पूरे खानदान को खत्म कर दिया देवी ने, और जड़ भरत ऐसे का ऐसे वापस घर लौट आया। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान देवता भी करते हैं, क्यों, देवता जानते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, ये हमारे जो भक्त हैं ये तो हमसे कुछ वरदान मांगने आते हैं, और ये जो भगवान के भक्त हैं ये कुछ मांगते नहीं है, ये तो भगवान के प्यारे हैं, इनकी रक्षा करना, देवी देवता को उनकी रक्षा करना अपना धर्म मान लेते हैं। तो देवी ने प्रकट होके अपने भक्त और उस डाकू को तो मार दिया, लेकिन जड़ भरत वहां से बच के आ गए। एक दिन जड़ भरत बैठे थे गैया चराते हुए किसी पेड़ के नीचे, तो सिंध और सोवेर का महाराज पालकी में चढ़ के अपने सारे राजा जब जाता है तो उसके साथ मंत्री गण होते हैं, सेवक होते हैं, रानियां होती हैं, लेकिन राजा धर्मात्मा था, जा रहा था गंगा सागर, क्योंकि गंगा सागर महान तीर्थ है जहां एक बार जाने से सब तीर्थों का फल होता है, बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर जा रहा था। और जब एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया तो चौथा आदमी ढूंढ रहे थे, तो इसको देखा तकड़ा मोटा, इसको कहा चलो महाराज की पालकी उठानी है, ये उठा ले, पालकी तो उठाए, लेकिन चलते समय इसका नजर नीचे होके कोई चींटी आ गई तो पांव को उधर रख दे और दूसरा कुछ देखे, तो महाराज कहते हैं कौन ठीक नहीं चल रहा है, पालकी में हमारे को कष्ट हो रहा है, पालकी ऊपर नीचे हो रही है। तीन बोलते महाराज हमको तो चलना आता है, ये नया आया है इसको चलना नहीं आता। और थोड़ी देर के बाद फिर महाराज को झटका लगा, पालकी में चार चलाने वाले अगर साथ में नहीं चलते तालमेल में तो ऊपर वाले को हर समय डर लगता है कि पता नहीं पालकी में गिर जाऊंगा, वो चारों को ऐसे चलना है जैसे घोड़े के पांव चलते हैं, और ऐसे चलते हैं जब पालकी वाले होते हैं, एक भी थोड़ा सा एक का पांव हिला नहीं और सारा है, क्या ये खाता पीता नहीं है, अरे तुम क्यों नहीं उठा रहे हो। इसने माना महाराज कौन कमजोर है, कौन खाता पीता नहीं है, किसको कह रहे हैं, एक मिट्टी का पुतला ऊपर बैठा है और दूसरा मिट्टी से पैदा हुए पेड़ से बनी हुई लकड़ी की पालकी है और तीसरी वो पालकी दूसरे मिट्टी के बने हुए आदमी के कंधे के ऊपर है और वो नीचे धरती वाली मिट्टी के ऊपर बैठा है, तो मिट्टी के ऊपर खड़ा, मिट्टी का आदमी उसके ऊपर, मिट्टी से पैदा हुए, पेड़ की लकड़ी की पालकी उसके ऊपर, एक आदमी मिट्टी का अपने आप को राजा समझ रहा है और दूसरों को समझ रहा है कि ये मेरा सेवक है। महाराज ने कहा ये तो कोई सामान्य आदमी नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, ये तो आत्मा के स्तर की बात कर रहा है। तो एकदम महाराज ऊपर से कूद के नीचे और प्रणाम करके कहते हैं, आप हो कौन, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। मुझे यम के दंड से भय नहीं लगता है, मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता है, लेकिन ब्राह्मण के शराब से मैं बहुत भय डरता हूं, और मैंने आपका कहीं अपमान न कर दिया हो, इसलिए आप बताइए है कौन, और आप ऐसे कैसे कहते हैं कि आपके सर के ऊपर भार नहीं है। और फिर महाराज कहते हैं, अगर वो कोई पतेले के अंदर, आग के अंदर चावल चढ़ाएंगे तो पहले पतेला गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होगा, ऐसे आपके कंधे के ऊपर रखे हुए भार तो आपको लगेगा ना। क्योंकि महाराज स्वप्न में जैसे हम पूरा राज बना लेते हैं और स्वप्न में राज समाप्त भी हो जाता है, उठते हैं तो न राज होता है न स्वप्न होता है, जैसे स्वप्न में भी तो ऐसे ही पूरी दुनिया चलती है, ऐसे ही संसार में लोग जो कुछ कर रहे हैं ये तो जागते वाला स्वप्न देख रहे हैं। महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा। महाराज ने कहा, वैसे भी मैं जा रहा था सत्संग सुनने के लिए तीर्थ में, क्योंकि तीर्थ में सत्संग सुनने जाना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, नहीं तो जाके पानी के अंदर स्नान करके वापस आने में कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है, ऐसे तो पशु भी करके आ जाते हैं, उसमें क्या। तब महाराज रहुगण को, भरत महाराज जड़ भरत ने उपदेश दिया है, उसको बोलते हैं भवाटी। ये संसार ऐसा वन है, जंगल है, जैसे आदमी कभी जंगल में चंदन के पेड़ को काट के लाना चाहते हैं कि सस्ता लाएंगे, शहर में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन जब जंगल में चले जाएं तो रास्ता भूल जाते हैं और अंदर भूल भलैया में ऐसे फंस जाते हैं, फिर प्यास लगती है तो पानी ढूंढते हैं और पानी होता नहीं है, कुएं के अंदर देखते हैं अंधेरा होता है और नीचे लटक के देखते हैं, ऐसा ये संसार है जिसमें एक बार आया तो वापस जाके मां के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, वापस इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसी आपने जंगल में कभी जाके देखो तो पशुओं के चलने से ऐसे छोटी छोटी पगडंडियां बन जाती हैं और वो पगडंडी एक से दूसरी मिलेगी, वो कभी बाहर निकल नहीं पाएगी। राजमार्ग जो है उस पे आओगे तो बाहर निकल पाओगे। तो ऐसे इस संसार में कलयुग में बहुत से लोगों ने अपने अपने पथ पगडंडियों के बना रखे हैं और उसके ऊपर लोग उधर ही घूमते रहते हैं, कहीं जाने का रास्ता है नहीं। ये भगवान का राज मार्ग भक्ति का, आंखें बंद करके दौड़ते जाओ तो भी मंजिल आ जाएगी। और ये कौन पहुंचाएगा, तब ऋषभ देव, तब भरत महाराज कहते हैं, जड़ भरत महाराज रहुगण, न तपस्या से कुछ होगा, न दान से कुछ होगा, न यज्ञ से कुछ होगा, जब तक किसी साधु महात्मा महत पुरुष की कृपा नहीं होगी, उसके चरणों की रज का अभिषेक नहीं करोगे, जब तक वो आपको उंगली से पकड़ के राजमार्ग भक्ति के ऊपर नहीं चलाएगा, तब तक इस जंगल भव दुनिया के जंगल से निकलना संभव नहीं है। और तब महाराज ने पूछा, आप हैं कौन। बोला, आप कौन से देश के राजा है। बोला, सिंध और सुवेर के राजा है। बोला, वो कौन से वर्ष में आता है। बोला, भारत वर्ष में। बोला, भारत वर्ष का नाम किसके पीछे है। बोला, वो ऋषभ देव का बेटा महाराज भरत। बोला, वो तो मैं हूं। अब महाराज को आश्चर्य लगा कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो यहां तीन बातें समझ में आती है। पहली बात ये समझ में आती है कि दूसरा जन्म होता है, भरत महाराज को हिरण के शरीर में जाना पड़ा और फिर जड़ भरत का तीन जन्म लग गए तो दूसरा जन्म होता है। दूसरा जिसका ध्यान करते हैं उसी का वही जन्म मिलता है, उसका जन्म मिलता है अंत समय में। और तीसरा ये है कि जो हम भगवान की भक्ति करते हैं वो नाश नहीं होती है, चाहे किसी भी जन्म में जाए वो भक्ति हमारे साथ रहती है, और जब तक पूरी नहीं होती है तब तक भगवान का हमारी सहायता करते रहते हैं। तो यहाँ 15 अध्याय पूरे होते हैं। आगे परीक्षित महाराज ने भूगोल खगोल के विषय में पूछा है कि ये तारा मंडल, ये सप्तऋषि, ये द्रु लोक और ये सूर्य कैसे भ्रमण करता है, और फिर ये भूमंडल में 7 द्वीप हैं और हम जिस द्वीप में रहते हैं उसका नाम जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, और 9 वर्ष में बाकी एक बीच में जो वर्ष है उसका नाम इलावर्त वर्ष है, जिसमें शंकर जी एक पुरुष है और पार्वती जी एक स्त्री है, और कोई पुरुष वहां जा नहीं सकता। वहां कोई घोड़ा जाता है तो घोड़ी बन जाता है, बैल जाता है तो गाय बन जाता है, आदमी जाता है तो स्त्री बन जाती है, और मच्छर जाता है तो मछली बन जाती है। वहां कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। वो एक बार कुछ ऋषि आ गए, पार्वती जी अपने कोई नहा आदि ऐसे कपड़ा वस्त्र पूरा नहीं था, शंकर जी को कहा कि यहाँ ये सब लोग आते हैं, तो कहा ठीक है आज से कोई भी यहाँ आएगा अपने आप स्त्री बन जाएगा। तो इलावर्त वर्ष तो ऐसा है वहाँ कोई पुरुष नहीं है, इसलिए आगे 9वें स्कंद में आएगा कि सूर्य वंश का महाराज सदामन्यु एक सिंधी घोड़े के ऊपर चढ़ के उस वर्ष में चला गया, घोड़ा घोड़ी हो गया और महाराज सदामन्यु लड़की हो गई, और जब ये लड़की हो गया उस वक्त चंद्रमा का पुत्र बुद्ध उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया, और उस लड़की से एक बेटा पैदा हुआ उसका नाम है पुरर्वा, और पुरर्वा से चंद्रवंश शुरू होगा, बुद्ध का बेटा पुरर्वा, और पुरर्वा का फिर आगे जो है ययाति, ययाति के बाद यदु, और यदु के बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। ये वंश ऐसे शुरू हुआ। वो स्त्री कोई सामान स्त्री नहीं थी, वो थोड़े समय के लिए सिर्फ ये स्त्री बनी थी। तो एक इलावत वर्ष है बीच में, बाकी जो 7 वर्ष है वो दिखते नहीं है, लेकिन सब में भगवान विष्णु की पूजा होती है। एक वर्ष का नाम है हरि वर्ष, जहां नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद करता है। एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष, जिसमें भगवान रामचंद्र की पूजा हनुमान जी करता है, और इन वर्षों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हुई है भगवान राम जी की, भगवान नरसिंह देव की और अन्य भगवान के अवतारों की, और उनमें से एक ही वर्ष है जो देखने में आता है, उसका नाम है भारत वर्ष जिसमें हम रहते हैं। बाकी जो वर्ष हैं इनको भौम स्वर्ग बोलते हैं। लोगों ने एक स्वर्ग का नाम सुना है जिसको स्वर्ग लोग बोलते हैं, जहां देवता रहते हैं, हम रहते हैं ये भूलोक, इसके ऊपर भूलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, स्वर्ग के बाद तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, तो तीसरे लोग जो हमसे ऊपर जो तीसरे नंबर पे वो स्वर्ग लोक है। लेकिन इस जम्बू द्वीप में जो 8 वर्ष है उसको भौम स्वर्ग बोलते हैं, भूमि के ऊपर स्वर्ग। जब स्वर्ग से कोई लोग वापस लौटते हैं तो उन लोकों में जाके रहते हैं। 10,000 साल तक कोई कष्ट नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, इन लोकों में अस्पताल नहीं है कोई भी, कोई आदमी इनको बीमार नहीं पड़ता है। वहां एक बच्चा आखिरी साल में एक बच्चा होता है बस। तो ये वर्ष जो है इनको भौम स्वर्ग बोलते हैं, भूमि के ऊपर स्वर्ग। और तीसरे स्वर्ग जो है उनको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। बिल्व का मतलब बिल होता है, जैसे चूहे का बिल है। तो हमारे पृथ्वी के नीचे सूतल लोक, जहां बलि महाराज रहते हैं, उसका वैभव इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा है, तो उसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं। और उसी को किसी का भय नहीं है, सिर्फ भगवान के सुदर्शन चक्र के अलावा किसी का भय नहीं होता है। तो ये 8 वर्ष तो ऐसे हैं, एक वर्ष भारत वर्ष है, और ये भारत वर्ष खारे पानी के समुद्र से घिरे हुए पृथ्वी पूरी का नाम है। इतना छोटा नहीं है भारत जिसको आज हम मानते हैं, मानचित्र जो हमारे सामने है ये भारत इतना छोटा नहीं है। कृष्ण भगवान के जमाने में भारत की सीमाएं बहुत दूर दूर तक थी, कृष्णकालीन भारत बहुत दूर दूर तक था, और रामकालीन भारत में तो ये सब दुनिया पूरी उसी के अंदर अंतर्गत आ जाते थे। ये पूरी धरती का नाम भारतवर्ष है। सो भारतवर्ष की महिमा देवता गाते हैं कि भारत में मानव का जन्म बहुत दुर्लभ है। बोलो वहां क्या मिलता है? तो देवता कहते हैं नयत्र वैकुंठ कथा सुधा अपगाह। अगर भगवान हरि की कथा, वेंकटेश वैकुंठ नाथ की कथा, कृष्ण राम की कथा नहीं है तो वो स्वर्ग भी हमें नहीं चाहिए, क्यों वहां कथा होती नहीं। न यत्र साधवो त आश्रय, भगवान के अमृतमय गंगा की धारा कथा की नहीं बहती है, जिसके किनारे पे साधु भक्त लोग बैठ के रसास्वादन अगर नहीं करते हो। न यत्र यज्ञ मखा महोत्सवाह, जहां हरि कीर्तन का यज्ञ संकीर्तन यज्ञ न होता हो, जहां जन्माष्टमी रामनामी और ऐसे नरसिंह चतुर्दशी गौर पूर्णिमा ऐसा उत्सव न होता हो। सुरापि लोकम, उभले देवताओं का लोक हो, स्वर्ग हो, हमें नहीं चाहिए। इसका अर्थ है स्वर्ग लोक जाने से अच्छा है हरि कथा में बैठना, हरि भक्तों का संग करना और हरि कीर्तन करना। ये स्वर्ग से महान देवता कह रहे हैं। देवता कहते हैं हमने कोई पुण्य किया है तब हमको देवता बनने का शुभ अवसर मिला है, तो उस इसका मतलब कुछ पुण्य तो देवता बनने के लिए खर्च हो गया, तो उतना खर्च किया तब तो देवता बने। अब अगर थोड़ा पुण्य बचा है तो भारत में हमको मानव का जन्म दीजिए, भगवान भारत में हमको मानव का जन्म दीजिए। सुर दुर्लभ, देवताओं को लिए मानव जन्म भारत भूमि में दुर्लभ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार। अगर भाग्य से आपका भारत में जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करो, जन्म को सफल कर लो। सार्थक करो का मतलब भगवान को अर्थ क्या है जीवन का, भगवान को प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लो। बोला फिर क्या करें, बोलो कर परोपकार, फिर दूसरों का भला करो, जाओ जगह जगह जाके भगवान के नाम का प्रचार करो, गली गली में जाके कहो हरि बोल कहो, गोविंद के गुण गाओ हरि बोल हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भारतवर्ष की महिमा है, पूरे विश्व का भारत गुरु है, लेकिन जब से हमने ये प्रचार के कार्य को छोड़ दिया है और धन दौलत के पीछे पागल होके लग गए हैं, तब से दुनिया सारी दुखी है। प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है भागवत के आमुख में ही, आमुख में क्या जो प्रस्तावना में लिखी है कि पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आजकल समस्याएं हैं, आतंक है, कठिनाई है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उसका कारण भारत है। उसका कारण भारत क्यों है, भारत ने तो कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया नहीं, आज तक इतिहास में भारत अपनी सीमा से बाहर कभी आक्रमण करने गया नहीं, हमेशा संतुष्ट रहा है। कहीं कहां से तुर्क आया, अफगान आया, मुगल आया, अंग्रेज आया, यहां आए क्योंकि यहां सब कुछ था, इसलिए लेने आए, हम कहीं लेने नहीं गए। तो कहीं भारत अपनी सीमा से बाहर कभी गया नहीं है, भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण किया नहीं है, तो भारत क्यों कारण है सारे दुनिया के दुख का। बोला इस भागवत का प्रचार नहीं किया। अगर ये भागवत धर्म का प्रचार विश्व भर में किया होता भारत के संतों महात्माओं ने, भारतवासियों ने, तो आज विश्व की ये परिस्थिति नहीं होती जो आज है। ऐसा बिगड़ा हुआ विश्व का हाल नहीं होता जैसा आज है। ये बहुत बड़ी, एक दिन प्रभुपाद जी ऐसे भाव में कह रहे थे, मैं अकेला 70 साल की उम्र में वृंदावन से वे पाश्चात्य देश में भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए गया, आज पूरी दुनिया के अंदर केवल 12 साल में सैकड़ों केंद्र बने हैं और हजारों लाखों लोग हरि बोल हरे कृष्ण गा रहे हैं। अगर 5 नवयुवक और निकल के आ जाते मेरे साथ भारतवासी, तो आप तो एक अंग भंग भारत की बात कर रहे हो, लेकिन हम तो पूरी दुनिया को भारत बना देते। बात ने ये शब्द कहे थे, उन्होंने प्रवचन में कहा था कि 5 नौजवान भी मेरे को मिल गए होते तो पूरे विश्व को भारत बना दिया होता। क्योंकि भागवत धर्म को सब, क्योंकि विशेषता क्या है भारत धर्म की, भागवत धर्म की विशेषता देना है, लेना नहीं है। देने आए हैं तुम्हारे को, क्या देने आए हैं, सुख शांति देने आए हैं। दुनिया वाले सुख शांति लूटने के लिए आते हैं, और भागवत धर्म वाले जहां जाते हैं सुख शांति देने जाते हैं, तो ये सुख और शांति देने के लिए आए। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भारत की महिमा गाने के बाद 5वें स्कंद के अंतर में नरकों का वर्णन है, कि कौन से नरक में कौन सा पापी जाएगा। आप तो सब भागवत श्रवण करने वाले हैं, आपको तो कभी यमराज के यमदूतों का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। एक बार भी भागवत का श्रवण कर ले तो यमलोक में नहीं जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन नरकों का वर्णन है। और फिर ये भी कहा है कि बहुत प्लाट खाली पड़ा है, नए नरक भी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग जो है झूठ कैसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल के ऊपर होते हैं, घर में सोए हुए बोलते हैं ऑफिस में। तो अब एक नया नरक वहां पे बन रहा है, एप्पल वाला नरक अलग है और सैमसंग वाला अलग है, ये नया नया उधर इन्वेंशन हो रही है। क्योंकि इसके ऊपर लोगों ने जितना झूठ बोला इतना कब जिंदगी में नहीं बोला। ये मोबाइल वाला झूठ बहुत ज्यादा झूठ है, दिन दाड़े झूठ बोलते हैं। और एक दिन आपको कहा था फ्रिज वाला एक नरक बना है कि पहले लोग रोटी बनती थी गाय कुत्ते को देते थे, अब फ्रिज में ठोंसते हैं कि बाद में खाएंगे। तो वो ऐसा भी नरक है कि सब चीजें ठंडी पड़ी होगी, गर्म कोई नहीं होगी, ऐसे ही खानी पड़ेगी। तो ये मतलब वैरायटी उधर पड़ी है ऐसी। देखो भारतीय संस्कृति में हर गृहस्थी को 5 यज्ञ करने पड़ते। हमारे घर में 5 प्रकार से हंगार से हत्याएं रोज होती हैं। झाड़ू निकालते हुए जीव मर जाते हैं, पानी भरते हुए देखो पानी खोलते हुए नल कोई बेचारा चूंटी तो अंदर चली जाती है, और अनाज में से तो हम निकाल के बाहर फेंकते हैं मरने के लिए, आग जलाते हैं तो कोई मर जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार से रोज हत्याएं हर गृहस्थी के घर में होती हैं, इसलिए हर गृहस्थी को 5 यज्ञ करना होता है। उसमें से एक यज्ञ है भूत यज्ञ, मतलब कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, चुंटी को दाना, पक्षी को पानी, ये हमारा एक यज्ञ है। तो पहले लोग पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे और आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे। अब गाय की रोटी पति को खिला के गाय जैसा बनाते हैं, बेचारा बैठा रहे चुप करके, और कुत्ते वाली रोटी को पता ही, बच्चा खा जाते हैं, सारा दिन झगड़ा करते रहते कौन खाता है भगवान जाने, लेकिन ये है बहुत बड़ी समस्या। न चुंटी को दाना है, न पक्षी को पानी है, ये जो एक भूत यज्ञ। और एक यज्ञ को कहते हैं ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का मतलब ऋषियों ने जो सत्य शास्त्र दिए हैं उनका घर में बैठ के अध्ययन करना चाहिए, उनका पढ़ना चाहिए, ये ऋषि यज्ञ कहलाता है। तो ये सत्य शास्त्र जो यहाँ भागवत ला के रखी है भक्तों ने, ये भाग्यशाली ऋषि यज्ञ में जो संपन्न होना चाहता है। कल तो सूरी जी ले गया था, आज कौन भाग्यशाली इस भागवत का अपने घर में आवाहन करके विराजमान करेगा। जैसे भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी है ऐसे भगवान का स्वरूप है ये भागवत, और रोज जो पढ़ेगा वो रोज भगवान के साथ मिलने का मुलाकात के बराबर है। तो ये भागवत ऋषि यज्ञ है, एक देव यज्ञ है। घर के अंदर भगवान को बिठा के उसकी पूजा करनी चाहिए, अगरबत्ती करनी चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। ये 3 यज्ञ हो गए। चौथा है अतिथि यज्ञ, मेहमान कोई आ जाए तो बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ उसको भोजन कराना चाहिए, और हर गृहस्थी को दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहना चाहिए कोई भाई भूखा तो नहीं है, खाने से पहले किसको खिला के फिर खाना चाहिए। अभी आजकल ऐसे घर के बाहर कहने वाला तो मर्यादा रह नहीं गई है, तो कम से कम एक व्यक्ति जितना खाता है इतना कहीं साधुओं का भंडारा होता हो, कहीं मंदिर के अंदर जाके देना चाहिए अन्न, ताकि ये अतिथि यज्ञ होता रहे। और पितृ यज्ञ, हमारे पूर्वज पितर है, जीते माता पिता है, उसकी सेवा करनी पड़ चाहिए, और जो चले गए हैं उनके पीछे निमित्त में कुछ धर्म के कार्य करते रहने चाहिए, इसको पितृ यज्ञ कहते हैं। ये 5 यज्ञ पहले सब घरों में होता था, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और ऋषि यज्ञ। अभी किसी को कहते हैं पुस्तक ले लो भगवद गीता प्रभु जी 125 रुपया, 100 रुपये का, 150 रुपये का गीता नहीं ले सकता है, और 1000 रुपये का जूता लेता है, तो ऐसी कौम को जूता मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। हाँ मैं सत्य कहता हूं, बहुत बड़ी दुख की बात है, जो चीज हमारा जीवन बदल सकती है उसको लेते नहीं है, और जो चीज किसी काम की नहीं है उसके ऊपर कितना खर्चा कर रहा है समाज। कोई ध्यान नहीं है किसी को कि हम धर्म से कितने दूर जा रहे हैं, कितना खर्चा छोटी छोटी चीजों पे ऊपर हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन कोई धर्म में शादी के अंदर तो 50 लाख का प्लाट ले लेंगे, शादी का ले लेंगे 20 लाख वाला बड़ा हाल, और जो पंडित जी शादी कराना आएगा उसे बोला महाराज 1100 में काम नहीं चल जाएगा, फांस गया महाराज बेचारा, वो जवाब उसको नहीं देंगे। यहां से 50,000 रुपया दे के बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे, लेकिन 50 रुपया वो बद्रीनाथ वाली पेटी में नहीं डालेंगे। 50 रुपया भी डालते हुए बीमारी लगेगी। बाहर बैठ के 20 रुपया वाली चीज 50 रुपये में खाएंगे, क्योंकि वहां चीज सब चार गुना महंगी है, वो सब करेंगे। लेकिन जहां धर्म का देना है वहां किसी का दिल करता ही नहीं है। ये असल में कितनी विकृति आई है समाज के अंदर, उदारता समाप्त हो गई है। तो सत शास्त्र में नरकों के वर्णन में एक वर्णन ऐसा है कि सामने से मेहमान घर में आए और उसको देख के आंख टेढ़ी करे और उसका स्वागत न करे तो उसको ऐसे नरक में डाला जाता है जहां चील उसकी आंखें नोच के निकालते। और इस एक नरक के वर्णन ने भारत संस्कृति के अंदर हर घर के अंदर मेहमान का कमरा बना दिया, गेस्ट रूम का। कब से बना? जब से ये एक श्लोक पढ़ने से समाज के अंदर घर में सबने एक मेहमान का कमरा बनाया, ये गेस्ट रूम बना देते हैं ये हमारा, क्योंकि एक चीज ने इतना बड़ा संस्कृति में सुधार लाया है। तो यहां जब पांचवा स्कंद पूरा होता है तो छठे स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं ये नरक में लोग जाते हैं, कितनी पीड़ा भोगनी पड़ती है, इनसे बचाया कैसे जाए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं अगर पाप होता है तो उसका प्राश्चित करना चाहिए, प्राश्चित करना चाहिए भाई। बीमार होता है तो दवाई लेनी चाहिए, छोटी बीमारी तो हल्की दवाई, बड़ी बीमारी तो ऑपरेशन, ऐसे छोटा पाप तो छोटा, बड़ा पाप तो बड़ा, प्राश्चित करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा नहीं नहीं, प्राश्चित करना आप ठीक कह रहे हैं, एक बार पाप करे फिर प्राश्चित करे फिर जाके पाप करे तो प्राश्चित का फायदा क्या? हाथी जाता है गंगा में स्नान करता है, बाहर आके फिर मिट्टी अपने ऊपर डालता है, तो ऐसे स्नान का लाभ क्या हुआ? पाप करके प्राश्चित करे फिर जाके पाप करे फायदा क्या? तो सुखदेव महाराज कहते हैं अगर तपस्या करेगा, दान पुण्य करेगा, यज्ञ करेगा, सत शास्त्र पढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा तो पाप से बच जाएगा। और जब ऐसे कहा तो परीक्षित महाराज कहते महाराज सब तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, सबको तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, फिर सबका उद्धार कैसे होगा? तब सुखदेव महाराज समझे ये तो भागवत पुरुष है परीक्षित महाराज, न प्राश्चित से प्रसन्न हुए और न ज्ञान के उत्तर से संतुष्ट हुए। तब कहा मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। जो अगस्त ऋषि ने भगवान की पूजा करते हुए 3 बार भगवान की ओर हाथ उठा के कहा था मैं सत्य कहता हूं, और ये कथा अजामिल के नाम जप से अपने बेटे के नाम नारायण उच्चारण करने से यमदूतों से बचा और भगवान के विष्णु दूत आए और एक उसको मौका और मिल गया, यमलोक जाने के बजाय बच गया और हरिद्वार जाके भगवान का भजन किया। और अजामिल की जीवनी की बताते हुए कहते अजामिल ब्राह्मण था, यज्ञ करता था, तपस्या करता था, लेकिन फिर भी ये साधन हृदय के अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जब भी वो मौका सामने आ गया तो एकदम पाप करने के लिए मन उतावला हो गया। एक महाराज कह करते थे किसी को, अरे तुम्हारे से तो हमारी बिल्ली अच्छी है, हम जो आज्ञा करते हैं बैठी होती है, और बिल्ली के सर के ऊपर दिया रखते थे और बिल्ली को बोलते तुम बैठ जाओ, बिल्ली बैठी रहती थी, और जो आता उसके बोल डांटते थे तुमसे तो बिल्ली अच्छी है। तो एक बोला बुजुर्ग पुराना मंत्री था, उसने बोला महाराज बिल्ली आपकी आज्ञा नहीं पालन करेगी। बोला कैसे नहीं करेगी, रोज करती है। बोला कल ले आना, वो क्या है चूहे लेके आया टोकरी में 5-7। महाराज ने कहा महाराज आपकी बिल्ली को मिल गया, सर के ऊपर दिया रख दिया। बोला बिल्ली अब बैठी रहो। बोला महाराज नहीं आ गया मांगे। बोला कैसे नहीं मांगे, ओ मानेगी। उसने चूहे बाहर निकाले, बिल्ली एकदम कूदी फेंका चूहे को जाके पकड़ा। बोला महाराज आपकी आ गया तब तक मांगती जब तक चूहा नहीं है सामने, तो चुप करके तब तक बैठती है ज्ञानी जब तक सामने कोई भोग की चीज है नहीं। जैसे भोग की चीज सामने आई तो भागने लगते। तो अजामिल इतना तपस्वी है, गया था लकड़ी लेने, फल फूल लेने यज्ञ के लिए, और देखा एक वैश्या को किसी दुष्ट के साथ आलिंगन करते हुए, तो कार्य मैं ब्राह्मण हूं कहां देख रहा हूं। फिर बोला देखने में क्या फर्क पड़ता, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, मन के अंदर झगड़ा लगा और उसको देखता रहा, और देखते देखते उसका पतन क्या होगा, ब्राह्मण का घर काम छोड़ के अपनी पत्नी को छोड़ के सत्यव्रता और उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। हम जब ये कथा कहते हैं तो आश्चर्य लगता है कि उसने एक ऐसा दृश्य देखा। आज तो दुनिया के अंदर ये जितने बिल बोर्ड लगे हैं, जितने टेलीविजन के अंदर एडवर्टाइज हैं और पाश्चात्य देश में तो आदमी पशु से भी ज्यादा गया गुजरा व्यवहार कर रहा है, और कहीं स्कूलों कॉलेजों के बाहर किसी भी पार्क में जाके देखो जो जो नौजवान लड़के और लड़कियों का व्यवहार है, ये देख के लज्जा आती है। ये समाज हमारे के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो उस वक्त तो एक अजामिल का पतन हुआ था, आज क्या हाल होगा समाज का, इसके ऊपर ध्यान देने जैसा है। कुछ देशों में हम देखते हैं कि बहुत सख्ती है, बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है नहीं जो किसी को ऐसा बिचारी जाए ऐसे बाहर की तरफ। सो अजामिल के जीवन की कथा ऐसी है कि वो उसने वैश्या से विवाह कर लिया, पुत्र 80 साल की उम्र में एक बालक हुआ, और कुछ ऋषियों ने कृपा की कि इसका बच्चे का नाम नारायण रख दो, क्योंकि संत महात्मा चाहते हैं कि अब इसको सीधा कहेंगे नारायण जपो तो ये नहीं जपेगा, लेकिन देखिए भगवान का नाम पुत्र के मोह की माखी में मिला के दे देंगे तो ये शहद समझ के चाटता रहेगा। और फिर अजामिल ने तो सारा दिन नारायण पानी लाओ, नारायण रोटी लाओ, नारायण चप्पल लाओ, नारायण नारायण इतना किया कि उसके पाप तो धुल गए। अंत समय उसके सामने तीन यमदूत आके खड़े हो गए, और यमदूत तीन आते हैं, एक मन से किए हुए पापों का फाइल लेके आता है, एक वचन से किए हुए पापों का फाइल, और एक हाथ से किए हुए पापों का फाइल। कर्म मन वचन कर्म से पाप, तीन यमदूत आते हैं, बड़े बड़े खड़े खड़े ऐसे बाल होते हैं, आंखें बहुत बहुत लाल होती हैं, और बाल भी अलग अलग रंग के होते हैं, लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, जैसे आजकल लोग बच्चे देखा है ना आपने, ऐसे करके एक तो खड़े करते हैं, फिर यहाँ कुछ पीले कुछ लाल बनते हैं, ये सब यमदूत का दर्शन यहाँ बोर्ड से बच्चे ऐसे ड्रामे करना शुरू कर दिए है, या कहाँ से आइडिया आया यमदूतों का आइडिया। अब ऐसे भूरे बाल करना लाल बाल करना ये तो गधे घोड़े कुत्ते को होते हैं, तुमको काय के लिए, अच्छे भगवान ने काले दिए तो काले रहने दो ना, कुछ फिर डिजाइन बदलते रहते हैं। अरे कृष्णा 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 हरे हरे, अरे राम अरे राम 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 हरे हरे। तो आगे चलते हैं, उस वक्त अजामिल ने अपने बेटा सामने खड़ा था, या तो भय के मारे उसको कहो तुम भाग जाओ यमदूत खड़े हैं इसलिए ऐसे कहा, या कहा कि मेरी रक्षा करो, जो भी भाव से अचानक उसके मुंह से निकला नारायण नारायण निकला, तो चार विष्णु दूत शंख चक्र गदा लिए हुए, भगवान विष्णु जैसे देखने में आते हैं विष्णु दूत, उनका रूप भगवान जैसा होता है, सिर्फ एक कौत्सव मणि नहीं होती है, एक यहां छाती के ऊपर वाम भाग में सोने जैसे बाल होते हैं भगवान विष्णु के, उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं, वो लक्ष्मी का स्थान है, वो विष्णु दूतों में नहीं होता है, और तीसरा भृगु ने जो लात मारी थी वो निशान नहीं होता है, ये तीन निशान सिर्फ विष्णु में होते हैं, विष्णु दूतों में नहीं होते, नहीं तो देखने में एक जैसे होते। उन्होंने आगे कहा इसको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो, क्या पाप किया इसने, बोला इतना शास्त्र के विरुद्ध सारा काम किया है, बोला वो तो ठीक कह रहे हो लेकिन इसने भगवान का नाम लिया नारायण का, वो बोला भगवान का थोड़ी नाम लिया, अपने बेटे का नाम लिया है, बोला किसी के बेटे का नाम थोड़ी है, नारायण का नाम तो आदि पुरुष का नाम है, वो तो पहले से है, बेटे का नाम तो कल रखा है, नारायण का नाम अपने से इतना प्रेम करते हैं, एक बार नारायण का नाम उच्चार करने के बाद कोई पाप बाकी बचता नहीं है, फिर कोई पाप नहीं करे, नारायण उच्चारण किया उसके बाद मूर्छित हो गया और कोई पाप नहीं किया तो जन्म जन्मांतर के पाप की राशि जल के खत्म हो जाती है, लेकिन नारायण का नाम लिया और फिर पाप करता रहा तो वो पाप वापस जागृत हो जाएगा, जो खत्म हो गया था वो फिर जाग जाएगा, ये शास्त्र का नियम ये है, एक बार पाप नाम लो तो सब पाप समाप्त हो गए, तो शर्त क्या है, दोबारा पाप मत करो, अगर दोबारा पाप किया तो वो पुराने वाले भी जाग के बैठ जाएंगे कि अब हम जा नहीं रहे, इसलिए विष्णु दूतों ने उनको कहा तुम छोड़ो इसको नहीं ले जा सकते हो, और अजामिल के गले से जम फांस निकल गया, अजामिल बात करना चाहता लेकिन विष्णु दूत चले गए, लेकिन विष्णु के भक्तों का संग हो गया, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे भक्त विष्णु दूत हैं, ये जगह जगह जाके भगवान के कथा सुनाते हैं, लोगों को यम दूतों से बचाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे भक्त हैं ये सारे विष्णु दूत हैं, ऐसे वैष्णव विष्णु दूत होते हैं। अब यमलोक, यहां तो अजामिल ने को मौका मिल गया, घर गया नहीं, पाप छोड़ा, हरिद्वार चला गया, गंगा के किनारे बैठ के सही नारायण का नाम जप के उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया। लेकिन यम दूतों ने जाके फांस फेंका, बोला यमराज महाराज कितने कितने शासक हैं, आपके ऊपर भी कोई है क्या? हमको धक्के दे के वहां से निकाल दिया, हमेशा जाते हैं किसी को पकड़ के आते हैं, पहली बार हमारे को वहां से वो कोई विष्णु नारायण के नाम। ओए, यमराज नाचने लगा, बोला मेरे यमलोक में नारायण का नाम आज आपके मुख में निकला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, तुम्हारे को विष्णु दूतों का दर्शन हो गया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि यमदूत कौन होते हैं, जो सौ बार नरक में जाए और सब नरकों को अच्छी तरह से जान लेता है, उसको प्रमोशन देके यमदूत बना देते हैं, क्योंकि सारे नरकों का उसको पता होता है। जैसे जेल के अंदर ना, जो बार बार जेल में जाता है उसको फिर बाकी जो बंदी है ना उनका इंचार्ज बनाते हैं, क्योंकि उसको सब पता है नेम का। तो इतना बड़ा यमदूत है और नारायण का नाम ले रहा है, बड़ा आश्चर्य लगा उनको। और फिर कहा कि सुनो मेरे भाई, मेरा यमदूत तो सुनो आज से मेरी बात, वो नारायण हमारे स्वामी हैं, और आज की बात याद कर लो, जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं उच्चारण हुआ हो, जिसकी गले में कंठी माला नहीं है तुलसी की, जिसके ऊर्ध पूर्ण तिलक नहीं लगा है, उसको तो पकड़ के मेरे पास लाना। लेकिन जो राम नाम जपने वाला हो, हरि बोल बोलता है, हरे कृष्णा, उसके निकट कभी मत जाना, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। यमराज ने ऐसा नियम बता दिया है कि वो एक बार भगवान के नाम के रास्ते पे चल जाए तो फिर यमदूत कभी उसके निकट तक नहीं आते हैं। तो यहां तीन अध्यायों में भगवान अपने नाम से जब थक हार जाते हैं, हमारा बल समाप्त हो जाता है, तब हमारा पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं। ये छठा स्कंद पोषण और रक्षण का स्कंद है। तो नाम के बल से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वैसे भगवान का नाम बहुत बलवान है। भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं तब किसी का उद्धार करते हैं, लेकिन नाम जपते जपते लाखों करोड़ों लोग संसार से उद्धार हो गया। इसलिए भगवान ने कलयुग के रूप में अंदर नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए नाम जप के अपने जीवन को सफल करना चाहिए, भगवान के पोषण को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बाद आगे छठे स्कंद में नारद और दक्ष की कथा छोटी सी आती है। आपको चौथे स्कंद में बताया कि दक्ष को बकरे का सर शंकर जी ने लगाया, और फिर आगे उसको बकरे का सर अच्छा नहीं लगा, उसने तपस्या की और भगवान विष्णु की प्रार्थना की, और दोबारा वो ब्राह्मण दक्ष अब प्रचेताओं के पुत्र के रूप में क्षत्रिय दक्ष पैदा हुआ। अब क्षत्रिय हो गया इसका वर्ण, और ये दक्ष जब पैदा हुआ तो इसको फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। तो इसने अपने मन से सृष्टि करना शुरू की, लेकिन सृष्टि थोड़ी देर टिके फिर चली जाए। मन की सृष्टि ऐसी है जैसे हम अपने रात को सोए सोए सपने में सृष्टि करते हैं। सपने में हम घर भी बना लेते हैं, दुकान भी बना लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, उठते हैं तब तक सब समाप्त हो जाता है। तो सपने की सृष्टि सब बनाते हैं, इसको बोलते हैं मन की सृष्टि। तो ऐसे किसी के मन में और ज्यादा बल ज्यादा है तो कुछ पैदा कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर टिके। तो कहा कि फिर आप विवाह कर लो। तो दक्ष ने विवाह किया, प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह हुआ, और 60,000 पुत्र हरियाशो पैदा हुए। और कहा बेटा प्रजा बढ़ाने से पहले तपस्या करने जाओ। और ये 60,000 पुत्र कच्छ में नारायण सरोवर है समुद्र के किनारे पे, नारायण सरोवर के वहां जाके स्नान करके तपस्या करने बैठे, और तपस्या से हृदय पवित्र हुआ। नारद ने देखा कि कितने बड़े अच्छे बच्चे हैं, पिता का आज्ञा पालन करके तपस्या करके हृदय तो शुद्ध कर दिया। ए नारद जाके कहता है बेटा आपको मालूम है धरती का अंत कहां होता है, धरती कहां समाप्त होती है, कुछ मालूम है? आपको ये मालूम है कि एक इस धरती के अंदर खड्डा है, उसमें एक बार गिर जाए कोई बाहर निकल नहीं पाता है। आपको मालूम है उधर एक ही पुरुष है, बाकी सारी स्त्रियां हैं। अरे उधर एक नदी बहती है, दो दो दोनों तरफ बहती है। ऐसे 10 चीजें नारद ने बता दी जिसका अर्थ नहीं बताया और नारद चला गया। ये भाई आपस में बैठ के विचार करने लगे। नारद कहता है धरती का अंत कहाँ है, इसका मतलब शरीर लेने का चक्कर कब तक चलेगा मालूम नहीं है, कब से हमको शरीर प्राप्त हुआ है और कब तक चलेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। ये संसार के अंदर ये नीचे कोई नरक में चला जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल है, पाताल में चला गया तो निकलना मुश्किल है, ऐसे अगर कोई भगवत धाम चला जाए तो वापस गिरना मुश्किल है, वहां क्यों ना जाए, पाताल में क्यों जाए। बोला एक पुरुष भगवान है, बाकी तो सारे जीव है, वो तो स्त्रियां हैं, और नदी दो तरफ बहती है, मृत्यु होती है, यहाँ जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो ये तो दोनों तरफ चलने वाली नदी है, और वहां एक हंस है। ऐसे बहुत सी बातों को विचार किया, बोला हमको तो संसार में जाना ही नहीं है। और ये नारद जी के सारे शिष्य बन गए। और ये पता लगा दक्ष को, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, नारद को कहा हमारे बच्चों को तुमने संसार में प्रवेश करने से पहले ही फोड़ दिया। नारद तो चले गए, 1000 पुत्र और पैदा किए, उनका नाम रखा शबलासव। वो हरि के आश्रय में थे, ये शबलासव, ये भी वही नारायण सरोवर गया है, और नारद जी ने इनको भी वही पट्टी पढ़ा दी और ये कहा कि आप तो अपने भाइयों के पीछे चले जाओ, आपके भाई देखो साधु बन गए, अब संसार के संकट से मुक्त हो गए, आप क्यों संसार में फंसना चाहते हो। ये 1000 फिर साधु बन गए। अब तो दक्ष को क्रोध आया, नारद को कहा तुमको मैं शराब देता हूं कि कहीं तुम 3 दिन भी रुक नहीं पाओगे, तुम कहीं रुक गए तो किसी के बच्चों को तुम बिगाड़ते रहे, तुमने हमारे बच्चों को ऐसे साधु बना दिया, उनको संसार में प्रवेश करने नहीं दिया। नारद बड़ा खुश हो गया, नारद ने वापस शराब नहीं दिया, शराब दिया ही नहीं, का अच्छा है कहीं आश्रम बनाता तो कहीं पूजा पाठ करने में फंस जाता, आप घूमता फिरूंगा, आपका ये शराब ही मेरे लिए आशीर्वाद है। तो नारद के प्रवृत्ति मार्ग, नारद के निवृत्ति मार्ग का भगवान ने पोषण किया और दक्ष के प्रवृत्ति मार्ग का। और तब ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष अब बेटे मत पैदा करो, अब करो बेटियां पैदा। और नारद बेटियों को प्रचार करने नहीं आएगा, तो 60 बेटियां पैदा की दक्ष ने। इससे ये पता लगता है कि हमारे वैदिक ऋषियों को लड़की का जन्म है कि लड़का चाहिए ये पता लगता था कि हमारे को क्या चाहिए, तो वही पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो नवे स्कंद में आएगा कि महाराज विवस्वत ने कहा मुझे लड़का चाहिए, लेकिन रानी ने कहा मुझे लड़की चाहिए, वो लड़की पैदा हो गई। राजा महाराज कहता है लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ, महाराज हमने लड़का मांगा था। वशिष्ठ जी बोला ये रानी ने लड़की मांगी थी, इसका मतलब है कि पहले हमारे पूर्वजों को क्या संतान चाहिए, लड़का या लड़की, ये पता होता था और उनकी इसकी विज्ञान था, अब वो नहीं रह गया। तो अब 60 पुत्रियां जो हुई, इन 60 पुत्रियों का विवाह ऋषियों से हुआ जिनसे हमारी परंपराएं चली। उसमें से 13 कश्यप को दे दी, 10 धर्म को दे दी, एक जो भृगु को दे दी, ऐसे नाम है सब पुत्रियों का जिनका विवाह किया, उनमें से एक धर्म को दी मूर्ति, और मूर्ति का पुत्र नर नारायण है जो बद्रिक आश्रम में विराजमान है। ये भगवान का अवतार धर्म का पुत्र, ये दक्ष की पुत्रियों से हुआ। इसके बाद वर्णन आता है कि एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठा था और सारे देवता बैठे थे, और इंद्र बड़े वैभव के साथ बैठा था, दूसरे लोग गुणगान कर रहे थे। उनका गुरु बृहस्पति सभा में आया, इंद्र ने गुरु को देखा लेकिन उसका सम्मान नहीं किया, उठा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, आंख फेर दी, और गुरु समझदार था, वहां से गुरु गुम हो गया, अलोप हो गया। ये समाचार जब दैत्यों को मिला तो उन्होंने कहा अब इंद्र कुछ नहीं कर सकता, अब इंद्र का गुरु चला गया। पुरोहित गुरु ऐसे कहते, हर एक को अपना पुरोहित होना चाहिए। पहले हमारे पूर्वजों के कुल गुरु होते थे, कुल पुरोहित होते थे, अब सबके फैमिली डॉक्टर है, पुरोहित किसी का नहीं, सारे बीमार हैं, डॉक्टर सबके फैमिली है लेकिन फैमिली पुरोहित किसी का नहीं है। महाभारत में आता है कि चित्ररथ गंधर्व ने पांडवों को कहा, पांचों भाइयों को ध्रुव, जब वो कुंती के साथ लाक्षागृह से बच के निकले थे, बोला तुम्हारे को कष्ट इसलिए आ रहे हैं कि तुम्हारा पुरोहित नहीं है, तुम पहले पुरोहित का वरण करो तब तुम्हारा हित होगा। तब उन्होंने धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित वरण किया और सीधे गए महाराज द्रुपद की राजधानी में और द्रुपति के स्वयंवर जीता और वापस राज मिला। तो पुरोहित जीवन में होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल ये समाज के अंदर से ये भी परंपरा समाप्त हो गई। ये परंपरा बहुत दुख है कि समाप्त हो गई। सो पुरोहित देवताओं का नाराज हो गया, असुरों ने आक्रमण किया और इंद्र परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गया, क्या करना चाहिए? बोला आपने बहुत गलती की, अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, अब किसी और को गुरु स्वीकार करके तुम अपना ही पुष्टि कर लो। बोला किसको करें? बोला तुष्टा प्रजापति का बेटा है, उसका नाम विश्वरूप है, उसको तीन सर है, एक सर से देवताओं की तरह सोमरस पीता है, एक तर तो मानव जैसा है, और उसका नाना जो है वो असुर है। तो विश्वरूप के पास इंद्र गया, विश्वरूप को कहा हमारे पुरोहित बन जाओ। उसने कहा मैं क्यों पुरोहित बनूं, आपका पुरोहित बनना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन आप हमारे चाचा हो, बड़े हो, आए हो, ना नहीं कर सकता हूं। विश्वरूप इंद्र का पुरोहित बना और विश्वरूप के पास नारायण कवच की विद्या थी। नारायण कवच वो मंत्र है जो अपने शरीर के ऊपर पढ़ के धारण किया जाए तो शरीर भगवान के द्वारा रक्षित होता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो विश्वरूप ने नारायण कवच इंद्र को दिया और इंद्र नारायण कवच पहने के बाद देवताओं से सुरक्षित हो गया। लेकिन एक दिन विश्वरूप यज्ञ कर रहा था तो इंद्र देख रहा है, एक आहुति तो देवताओं को दे रहा है, दूसरी अपने नाने के खानदान असुरों को दे रहा है। इंद्र ने कहा पुरोहित हमारा और छुपके हित तो अपने नाने के परिवार का कर रहा है। इंद्र ने विश्वरूप के तीनों सर काट दिए। अब ब्रह्म हत्या लग गई, इंद्र के पूछे पीछे ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण की तुमने हत्या कर दी है। अब इंद्र कहता है मेरे से गलती तो हो गई, मैं मानता हूं कि मैंने ब्राह्मण की अपने पुरोहित की हत्या की है। तो सबने इंद्र से सहानुभूति की और इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या का पाप चार जगह पे बांटा और उनको चार वरदान दिया। पहला पाप चौथा हिस्सा दिया पानी को, बोला पानी तुमको दूध में डालेगा तो तुम्हारा दूध के रेट में बिक जाएगा, दाल में डालेगा तो तीन के पांच खा जाएंगे। लेकिन एक दिन मटके में भरा हुआ पानी दूसरे दिन रह गया तो उसमें ब्रह्म हत्या का पाप आ जाता है और उसके अंदर थोड़े बुदबुदे होने लगते हैं। इसलिए जो थोड़े से बड़ी उम्र की माताएं बैठी हैं घर में, मटका दूसरे दिन धो के दोबारा भरती थी, चाहे आधा पानी पिया हो या पूरा पिया हो, दूसरे दिन वो गिरा के धोने के लिए डालना है, वो पानी दोबारा नहीं पीना है, दूसरे दिन दूसरा पानी। ये पुराने मटकों का रवाज था, लेकिन अब ये बोतल जो बिस लहरी आ गई है, बिस सांप वाला, इसके अंदर तो इंद्र के पाप पूरे का पूरा बैठा हुआ है। ये तो पता नहीं कितने दिन का है, मटका रोज बदलने का पुराना नेम था। क्यों भाई, आपको मालूम है पहले ऐसे मटके बदलते, अब तो कूलर आता है तो पूरा नहीं हो तो तीन दिन चल जाए, तो पैसों का पानी है, पहले मेहनत करके निकालते। पहले माताओं की जिम क्या होती थी, 1960-65 में माताओं की जिम होती थी, सुबह आटा तैयार करना, फिर दही का मंथन करना, ये सुबह सुबह माताओं की जिम होती थी, बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता। और पुरुषों की क्या जिम होती थी, नल के साथ पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना, बाहर जाके थोड़ा सा जंगल से होके आना, कुछ लकड़ी लाना, ये जिम हमारी नेचुरल थी। अभी तो ये जिन बनने की जिम है। ये नेचुरल जिम, इसको कहते हैं नेचुरल जिम थी हमारी। ये हमारे पूर्वज तो ऐसे, ये तो 100 बार डंड निकालने का काम हो गया, पानी निकालना नल में से 10 रोज के मटके भरे, ये तो जिम हमारी को, ये तो प्राकृत था, सभी अपने आप सब करते थे। आटा गूंदना ये बड़ा मेहनत का काम है, अब तो सब मशीनों से होने लगे। हाँ, कपड़ा भी मशीन में धुल जाता है, पहले तो थोड़ा सा जोर लगाता था। तो ये और आश्चर्य तो ये है, ये सब मशीन से करके और फिर पैसा देके और जिम वाले के पास जाके ऐसे करते, अरे घर में कर लो। अरे भैया साइकिल के ऊपर चल के चले जाया करो, सुबह सुबह साइकिल पे सब्जी लेने चले जाया करो, जाएंगे कार में सब्जी लेने और फिर घर में खड़ी साइकिल को चलाते रहेंगे। अरे यही काम करना है तो वो कर लो। तो क्या हो गया है पता नहीं, समाज तो बिगड़ा हुआ है सारा, इसका विपरीत दिशा में चला गया। लोग क्या कहेंगे साइकिल चला रहे, अमेरिका के बड़े से बड़े रईस लोग भी साइकिल चलाते हैं। उनको साइकिल चलाने में, उन रोड के ऊपर साइकिल की लाइन अलग है, वो साइकिल की लाइन में साइकिल ही चलेगी। वो तो तरक्की जो प्रगतिशील देश है वो साइकिल चला रहे हैं, यहाँ तो साइकिल खड़ी खड़ी को चला रहे हैं। बाहर तो गाड़ी बड़ी चाहिए और शीशा भी बंद चाहिए, भले एसी खराब हो लेकिन शीशा खोलेंगे तो लोग कहेंगे इसकी गाड़ी में एसी नहीं। लोग दिखावे में फंसे हुए। हरे कृष्ण। सो इंद्र ने पहला पाप का चौथा हिस्सा पानी को दिया, पानी को ये वरदान दिया। दूसरा पाप का हिस्सा इंद्र ने दिया पेड़ को, बोला तुम्हारा जो रस होगा वो तो होगा ब्रह्म हत्या का पाप, लेकिन तुम्हारी डाली कोई काटेगा तो दोबारा अपने आप निकल आएगी। तीसरा हिस्सा धरती को दिया कि तुम जहां ब्रह्म पाप की वजह से बंजर रहेगी, यहां कोई पूजा पाठ यज्ञ आदि नहीं होगा, लेकिन वरदान ये देता हूं कि जहां खड्डा होगा समय के साथ भर जाएगा फिर सीधी हो जाएगी। चौथा ऐसा नारी ने पाप इंद्र से ले लिया, मासिक धर्म आएगा लेकिन भोग की भावना कभी समाप्त नहीं होगी। और इसके बाद तुष्टा जो पिता था विश्वरूप का, उसने बोला मेरे बेटे को ले गए थे पुरोहित बना के गर्दन काट दिया, उसने यज्ञ शुरू किया कि यज्ञ के अंदर से ऐसा पुरुष पैदा होगा जो इंद्र को मारेगा। लेकिन पुरोहित को मंत्र उच्चारण करने में गलती हो गई कि जिसका इंद्र शत्रु हो, और उस यज्ञ कुंड के अंदर से एक बहुत बड़ा लाल लाल बालों वाला चारों दसों दिशाओं को ढकने वाला पुरुष निकला, उसका नाम हो गया वृत्त। और क्योंकि उसको श्राप था असुर होने का इसलिए उसको वृत्तासुर बोलते हैं। और ये वृत्तासुर फिर दैत्यों का सेनापति बन गया माल, और बहुत बड़ा भयानक युद्ध देवताओं के साथ किया। अब इंद्र परेशान होके भगवान से याचना करने गया, अब क्या करे, नारायण कवच तो मिल गया लेकिन अब वृत्तासुर ने हमारे को सताया है। तो भगवान ने कहा ऐसे करें, दधीचि ऋषि के पास जाइए, उसकी अस्थियों से वज्र बनाइए, उसी से वृत्तासुर का वध होगा। तो दधीचि ऋषि के पास इंद्र गया और कहा कि ऋषि आप तो परोपकार करते हैं, आप अपनी अस्थियां हमको दे दीजिए और हमको वज्र बनाना है, ऐसे हमारे को भगवान ने कहा है। दधीचि कहने लगा हड्डियां कैसे दूंगा, मरूंगा तब दूंगा ना, कोई आदमी ऐसे थोड़ी मरेगा अपने आप। तो इंद्र कहता आप तो साधु परोपकारी हो, आपको जीने मरने का क्या अंतर पड़ता है। तो दधीचि ने कहा सत्य है, आपको भगवान ने कहा है तो हमें तो शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे एक स्थान है जहां नैमिषारण्य के 1-2 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है, उसका नाम है मिश्रित तीर्थ। वहां दधीचि ऋषि का एक मूर्ति बना के रखा है और उसके सारे शरीर के ऊपर दही और चीनी लगाया और गाय ने पूरे शरीर को चाटा और फिर की उसकी हड्डियां इंद्र ने ली। अब क्योंकि दधीचि का शरीर तो ब्राह्मण का छूटा ना, तो इंद्र को कहा कि अब तुम सारे तीर्थों में स्नान करो। तो इंद्र ने वहां सारे तीर्थों को आवाहन किया तो उस कुंड का नाम है मिश्रित कुंड, जिसमें इंद्र ने स्नान किया। अब दधीचि की हड्डियों से वज्र बन गया। अब इंद्र और वृत्तासुर के बीच में महायुद्ध संग्राम हुआ, और एक तरफ तो असुरों का संग्राम वृत्तासुर, एक तरफ से इंद्र, और इस लड़ाई में बहुत भयानक लड़ाई चलते चलते वृत्तासुर कहता है तुम मेरे भाई के हत्यारे हो, तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, आज तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हारे को दंड दूंगा। लेकिन फिर अचानक क्या लगता है, वृत्तासुर कहता है मैं जानता हूं कि भगवान ने तुम्हारे को वज्र हाथ में दिया है और इस वज्र से तुम मेरा वध करोगे, ये भी मैं जानता हूं। और एक ऐसा त्रिशूल माला वृत्तासुर ने कि आज एरावित हाथी और इंद्र जाके दूर गिरा और वज्र भी हाथ से गिरा, चारों ओर हाहाकार मच गया कि वज्र गिर गया, इंद्र का हाथी पीछे घट गया, अब क्या हो गया। लेकिन वृत्तासुर खड़े होकर कहता है अपना वज्र उठाओ, मैं बगैर शस्त्र वाले के अस्त्र शस्त्र वाले के ऊपर वार नहीं करूंगा। और अचानक वृत्तासुर ने इंद्र को कह दिया कि मेरे गुरु संकर्षण बलराम ने कहा है कि मेरे भक्तों को मैं ऐश्वर्य नहीं देता हूं। अरे मेरा प्राण निकलेगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा, इंद्र तू अभी तक यहीं रहेगा और दुख भोगता रहेगा, और एक बार ऐश्वर्य देता हूं तो दूसरे लोगों से ईर्ष्या होती है, फिर क्रोध होता है और फिर आदमी में अहंकार आता है। दो बहुत सुंदर श्लोक शिक्षा के हैं बलराम जी की। और अचानक ऐसे लगा कि वृत्तासुर को सामने भगवान नजर आ गए। लड़ाई के अंदर वो इंद्र को भूल के और भगवान को प्रार्थना करने लगा कि मैं आपके भक्तों का फिर दास कब बनूंगा, भूय दास अनुदास कब बनूंगा, मैं आपके भक्तों का दास फिर कब बनूंगा, और कब मेरा मन आपका स्मरण करेगा, मेरी वाणी आपका कीर्तन करेगी, मेरा शरीर आपकी सेवा करेगा। ये भक्ति के तीन चीजें भक्ति में है, वाणी से भगवान का नाम गाना, मन से भगवान का स्मरण करना और शरीर से भगवान की सेवा करना। और फिर कहता है भगवान ने कहा ये तो तुम करोगे, तुम्हें चाहिए क्या? बोला ननाक पृष्ठम, मुझे न इंद्र न मुझे ध्रुव का लोक चाहिए, न सत्य लोक चाहिए, न भूमि का राज चाहिए, न रस अधव रासाधिपत्यम, न मुझे पाताल लोक चाहिए, मुझे तो योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं विरह में आपको याद करता रहूं, बस ये मेरे ऊपर कृपा करो। और तीसरे श्लोक में कहता है कैसे विरह में याद करूं, तीन उदाहरण देता है। जैसे वो छोटा सा नन्ना मुन्ना पक्षी जिसके पर निकले नहीं है और प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आएगी मेरे को दाना खिलाएगी, ऐसे मैं आप अपने खाने की भी चिंता न करूं, आपकी कृपा कब मिलेगी, आप आएंगे खिलाएंगे। अब माँ आती है चबा के मुंह में देती है, वो तो खाने का भी प्रयास नहीं करता है। फिर डर लगा कि कहीं पंख निकलने के बाद माँ का ध्यान बच्चा नहीं रखता है, ऐसे भगवान मुझे ना समझ लें। बोला दूसरा उदाहरण में, जैसे छोटा सा नया बछड़ा गाय का खूंटे में बंधा होता है, गाय चरने जाती है, बछड़ा कहता है मेरी माँ आएगी तब मुझे दूध पिलाएगी, तो बछड़ा अपने प्रयास से दूध पीता है और माँ की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे मैं भगवान भक्ति करके आपके चरण के अमृत को पाने के प्रयास करूं। फिर बोला बछड़ा बड़ा हो जाएगा, घास खाएगा तो साल के बाद तो माँ का ध्यान नहीं रखेगा। तब तीसरा उदाहरण देते हैं, वो स्त्री जिसका पति परदेश गया है, वो एक एक दिन गिन के वो कहती है कल आएगा परसों आएगा, आएगा तो मैं सेवा करूंगी, सेवा करके उसमें प्रेम बढ़ता है, सेवा बढ़ती है, और ऐसा मैं आपके लिए सदा चिंतन करता रहूं। तो ऐसे ये तीसरे वाले उदाहरण को उत्तम उदाहरण माना गया है, उसमें सेवा चलती रहती है, उसमें सेवा समाप्त नहीं होती है। और अंतिम श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि मेरे कर्मों के कारण हो सकता है कि किसी भी जूनी में मैं चला जाऊं, तो मेरी मैत्री आपके भक्तों के साथ हो, मुझे आपके भक्तों का संग मिले, उनके साथ मेरी मित्रता हो, मेरा संसार में फिर वापस घर गृहस्थी में आसक्ति न हो, क्योंकि एक बार आसक्ति फिर पुत्र घर दार आदि में हो गई तो मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर भटकता रहूंगा। भगवान कहीं भी मेरा जन्म हो, आपके जिन आपका चरण कमल जिनका आश्रय है उनकी मैत्री देना। ये चार श्लोक कहा वृत्तासुर ने, इसको व्यास देव ने असुर लिखा ही नहीं, श्री वृत्त उवाच लिखा है, मतलब असुर नाम ही लिखने में व्यास देव को संकोच होने लगा, ऐसा भक्त है इसको असुर कैसे लिखूं, श्री वृत्त। और इंद्र कहता है धन्य है असुर राज, तुम्हारे अंदर तो भक्ति भरी हुई है, तुम्हें मारने में मुझे संकोच हो रहा है। अर्जुन इंद्र कहता है धन्य हो असुर राज, तुम धन्य हो। और उसके बाद एक वज्र से हाथ काट लिया वृत्त को, दूसरा हाथ काट लिया, वृत्त ने मुंह खोल दिया, इंद्र को निगल गया, इंद्र वृत्त के पेट में चला गया, अब हाहाकार मच गया। लेकिन वृत्त समाधि में बैठा, इंद्र को नारायण कवच पहना हुआ था और इंद्र के पास वज्र था, वृत्त का पेट काट के बाहर निकला। हमारे आचार्यों का मानना है कि वृत्तासुर का हाथ तो पहले ही समाधि में चला गया था आत्मा, वो तो मरे हुए शरीर को काट के बाहर निकल आया। तब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा, ये वृत्तासुर इतनी बड़ी भक्ति से भरा हुआ कौन था? तब कहते ये चित्रकेतु महाराज था। एक बार अंगिरा ऋषि घर में आए थे उपदेश देने, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं था। उन्होंने कहा महाराज रानियां बहुत है, राज बड़ा है, लेकिन पुत्र नहीं है। संत ने कहा आज इसको पुत्र का आशीर्वाद देते हैं, कल भक्त बनेगा तो कथा भी सुनेगा। बोला बेटा पुत्र तो होगा, लेकिन हमेशा सब पुत्र सुख दें ऐसा नहीं है, हर्ष शोक कभी तुम्हारे को सुख देगा और कभी दुख भी देगा। बोला महाराज मिलना तो चाहिए। अंगिरा चला गया, पुत्र हुआ, बड़ा आनंद मंगल हुआ। जिस रानी ने पुत्र को जन्म दिया था वो राजा को प्यारी हो गई, दूसरी रानियों को ईर्ष्या हुई। एक साल के बाद पुत्र को विष दे दिया और पुत्र मर गया। और पुत्र मर गया तो राजा हाहाकार करने लगा, रोने लगा। उस वक्त अंगिरा नारद जी को साथ लेके वापस आ गए। अब कहते हैं कि ये पुत्र मर गया, वापस क्या जीवित हो जाएगा आप ऐसे बैठे रहोगे तो? आप हैं कौन? आप कुमार हैं, आप ऋभु हैं, आप नारद हैं। उन्होंने कहा मैं वही अंगिरा हूं जिसने आपको पुत्र देने का वरदान दिया था, और ये हमारे साथ नारद जी आए हैं। नारद ने कहा आपके बेटे को मैं अभी मंगवा देता हूं। नारद ने कहा आ जाओ आत्मा, इस शरीर में वापस प्रवेश करो। आत्मा शरीर में प्रवेश किया और कहता है मेरा बेटा कहां गया था? राजा प्रसन्न होने लगा। बेटा कहता है हटो, रुक जाओ, कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बना हूं, कितनी बार तुम्हारी जूनियों में हम आपस में मिले हैं, ये रिश्ता हमारा इतने दिनों का था, अब हमारे को आगे जाना है, हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे। ये बड़ा आश्चर्य लगा कि ये संबंध इस दुनिया के हमारे कैसे हैं। कभी हमने एक उदाहरण दिया होगा, संसार में हम जिनको अपना मानते हैं जब तक हमारे साथ हैं तब तक अपना है, उसके बाद कहां जाएंगे, कौन करेगा, कुछ मालूम नहीं। तो हमारा उदाहरण सिंपल होता है कि आपकी जेब में जो ये भाई हमारे पास ये पैसे पड़े हैं यहाँ, अब ये हम समझते हैं हमारे को चढ़ाए हैं, हमारे हैं। बाहर जाके दो डजन केला ले गए तो केला वाला समझेगा मेरा है, और केले वाला जाके कहीं से सब्जी लेगा तो सब्जी वाला समझेगा मेरा है। और ऐसे ये लाख लाख जेब बदलते हैं, जब तक ये नोट जिंदा है, फटा नहीं है, तब एक लाख, और जिसकी जेब में जाता है वो इसी को अपना मानता है कि ये मेरा है। लेकिन इस नोट के ऊपर लिखा है कि ये क्या किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ये किसी का नहीं है, लेकिन सब इसको अपना मान रहे हैं। ऐसे जीव आत्मा के सर के ऊपर लिखा है भगवान श्री कृष्ण का अंश है, लेकिन हम मानते हैं हमारा है। नोट के ऊपर नाम देखो क्या लिखा हुआ है, आपका है लिखा है क्या? आपने इसको अपना माना है कितनी देर? जब तक आपकी जेब में, जेब से बाहर निकला तो इससे अपना रिश्ता खत्म, दूसरे का रिश्ता चालू। ऐसे जो भी समाज में हमारे घर में आते हैं वो हमारे लगते हैं, गए तो फिर कहीं किसी और के हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, असली कहाँ का है, फटाफटा कहाँ जाएगा, वापस सरकार में जाएगा। ऐसे जीव वापस किसका है? बोला जीव तो भगवान का अंश है, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, वो तो भगवान का अंश है। तो ऐसे नारद जी ने फिर उनको संकृष्ण का मंत्र दिया, बलराम जी का, कि संकृष्णाय नमः ये मंत्र जपो, अनंत शेषाय नमः। और 12 दिन में केवल उस मंत्र जपने से चित्रकेतु मानव से और वो विमान में चढ़ के और उन स्त्रियों के संग में आकाश में भ्रमण करते हुए कैलाश के पास गया, और वहां शंकर जी को देखा जो उपदेश कर रहे थे, लेकिन पार्वती उनकी गोद में बैठी थी। और ये ऊपर से हंसा के देखो तो सही, निर्लज शंकर स्त्री को गोद में बिठा के और प्रवचन कर रहा है। अब देखिए ये संसार का नेम ऐसा है कि हमारे मानव का नेम ओल है और है, देवताओं का नेम और है। उनके पास गोद में बैठने से कोई फर्क होता है? कुत्ता कुत्ते को काटता है, लेकिन आदमी को कुत्ता काटता है तो आदमी कुत्ते को थोड़ी काटता है, काटता है क्या? कुत्ता आदमी को काटेगा तो हम वापस जाके कुत्ते को काटेंगे क्या? ये कानून नहीं है, कुत्तों में है, हमें नहीं है। तो ऐसे देवताओं का कानून अलग है, नेम अलग है, लेकिन ये जो हंसा, तो माता पार्वती को क्रोध आया कि शंकर जिसकी सब पूजा करते हैं उसको ये हमको उपदेश देने वाला, जा असुर बन जा। तो इस चित्र केतु को असुर पार्वती बनने, पार्वती ने असुर बनने का दिया था श्राप, इसलिए ये वृता असुर बना। लेकिन वो नीचे उतर के आया, पार्वती को प्रणाम किया, बोला माँ मेरे कारण आपको दुख हुआ है, मुझे क्षमा करना, असुर बनने में मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आपको दुख हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। और वापस विमान में चढ़ाए। शंकर जी कहते हैं पार्वती देखो भगवान का भक्त है, तुम्हें भी श्राप दे सकता था लेकिन दिया नहीं है। और यहाँ चित्रकेतु की कथा पूरी होती है। एक अध्याय बाकी रहता है जहां दिति, दिति कश्यप अपने पति को कहती है कि मेरे बेटे असुरों को इंद्र संहार कर रहा है, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे पुत्र हो और वो जो इंद्र को मारे। कश्यप ने कहा इंद्र भी मेरा बेटा और ये मेरी दूसरी पत्नी और उसकी बहन है दिति की, अदिति की, और ये मेरे से वरदान मांग रही है कि एक बेटा इसको दूं जो मेरे दूसरे बेटे को मारे। पर कहां मैं इसकी बातों में आ गया, सेवा से संपन्न हो गए, उसको वर मांगने को कहा और उसने वर ऐसा मांग लिया कि एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे। लेकिन कश्यप ने कहे तो दिया, बोला अब इसको एक साल के लिए एक व्रत करो, आपको एक व्रत बताता हूं, ये एक साल व्रत करना है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है, किसी को गाली गलौज देनी नहीं है, हमेशा शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, खाने पीने के बाद हाथ मुंह धोना है और समय आने के ऊपर भगवान तुम्हारा इच्छा पूरी करेगा। समय इसलिए ज्यादा दे दिया कि भगवान की पूजा समय ज्यादा तक करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। यही प्रश्न दूसरी कश्यप की पत्नी आदिति कहेगी जब इंद्र का सिंहासन खाली होगा, तब उसको कहेगा ये 12 दिन में पर्योवर्त करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छे काम के लिए थोड़ा समय और बुरे काम के लिए ज्यादा समय में क्या हृदय पवित्र हो जाता है। अब इंद्र को पता लगा मेरे को मारने के लिए मेरी मासी व्रत कर रही है एक साल का। इंद्र छोटा सा बालक बन के ब्राह्मण सेवा करने लगा, आके आदिति की कहे उसका लकड़ी लाके दे, पूजा का फूल लाके दे, और इंतजार किस बात का करे कब गलती करती है ताकि इसके बच्चे को मैं नाश कर दूं। अब एक दिन अभिव्रत में कुछ थोड़ा समय बचा था, एक दिन दिति ने कुछ खाया, थकी हुई थी और हाथ मुंह नहीं धोया। इंद्र ने कहा इसका व्रत भंग हो गया और इंद्र उसके गर्भ में चला गया और वज्र से एक बच्चे का 7 टुकड़े कर दी और बच्चे चिल्लाने लगे मारो मत मारो मत मारो मत, और 7 को और 7 कर दिए तो 49 हो गए। लेकिन मरे नहीं, परीक्षित महाराज कहते मरे कैसे नहीं, वज्र से नहीं मरे। सुखदेव महाराज कहते आप भी तो नहीं मरे थे ब्रह्मस्तर से, जो रक्षा करने वाला है वो ना शक्तिशाली होता है। तो आज आप व्रत कैसे भंग हुआ, खाने पीने के बाद हाथ मुंह नहीं धुआ, और आजकल आप खाने पीने वाले खड़े खड़े जो ठेलों के ऊपर खा के घूमते हैं, ना हाथ धोते हैं ना मुंह धोते हैं, इनके अंदर कितने भूत घुसते होंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई चीज खड़े होके खानी नहीं है, पानी भी खड़े होके नहीं पीना है सवाय चरणामृत के। मंदिर में चरणामृत हो तो खड़े खड़े ले सकते हैं, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, लेकिन यहां तो खड़े खड़े सब खाने की आदत हो गई और जब चाहे तब खाने की, और कोई हाथ पांव मुंह धोना वो तो संसार में लोगों को भूल ही कया चलते, ऐसे वो टिश्यू पेपर से ऐसे कर देते। अब तो एक इंद्र था, हम सबके अंदर फिर बंदर घुसे हुए हैं। सो अब इंद्र उन 50 को बाहर लेके निकला, का माता दिति मैं इंद्र हूं, ये आपके पुत्र एक के 49 हो गए और मरे नहीं, इनका नाम है मारुत, मारो मत से हो गया मारुत। अब आपने इतनी भगवान की भक्ति की है, ये मुझे दे दो, मैं इनको देवता बनाता हूं, इनको दैत मत बनाओ। और तब तक तो दिति का हृदय भी परिवर्तन हो चुका था भक्ति से, वो 49 मारुत दिति के पुत्र होने के बावजूद भी देवता हो गए। यहां 6ठा स्कंद पूरा होता है। 7वें स्कंद में पहला प्रश्न पूछता है परीक्षित महाराज के, भगवान करते हैं पक्षपात, वृत्रासुर को मरवा दिया और इंद्र की रक्षा कर दी, ऐसे लगता है कि देवता पूजा भेंट पहुंचाते होंगे इसलिए देवताओं की रक्षा कर लेता है और असुरों को मरवा देता है। बहुत बड़ा भारी प्रश्न है, भगवान के ऊपर आरोप है पक्षपात का। सुखदेव महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं जो आपको अब कथा बताने जा रहा हूं ये कथा आपके पितामह युधिष्ठिर ने नारद से पूछी थी, और मैं वो कथा बताने जा रहा हूं जिसमें भगवान देवताओं की रक्षा के लिए आते नहीं है, केवल मैं ऐसे दैत पुत्र हिरण्यकश्यपु की कथा बताने जा रहा हूं जिसके लिए तो भगवान अवतार लेकर नरसिंहदेव आ गए। आप कहते हैं कि भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, अरे भगवान तो हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लेके खंभे से निकल गए, बहुत बड़ी बात है। और भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, जैसे ये बिजली है एक जैसी बिजली है, लेकिन ये माइक्रोफोन में आती है तो साउंड को बढ़ा रही है, पंखे में जा रही है तो हवा दे रही है, और बिजली में जा रही है तो लाइट दे रही है, तो इसमें बिजली का दोष है क्या? जैसा यंत्र है वैसा काम का अंतर है। बिजली किसी से पक्षपात नहीं करती, एसी में जाएगी ठंडा करेगी, हीटर से गर्म करेगी, बिजली का दोष नहीं है, उस यंत्र का जो मशीन है उसका दोष है। ऐसे पानी एक ही खेत में डाल दो, आम में जाएगा तो मीठा कर देगा, और नींबू को खट्टा कर देगा, और मिर्ची को कड़वी कर देगा, तो क्या इसमें पानी का दोष है? नहीं। ऐसे ही भगवान सबसे बराबर का व्यवहार करते हैं, हमारे अंतःकरण में जैसा यंत्र है, जैसा भगवान से भाव है वैसे भगवान हमारे से व्यवहार करते हैं। हमारा असुरी भाव है तो भगवान असुरी व्यवहार करते हैं, हमारा देवताई भाव है तो देवताई व्यवहार करते हैं। तो सतोगुण में जब होते हैं तो देवताओं का संग भगवान पक्ष लेते हैं, और रजोगुण प्रधान होता है तो असुरों का पक्ष लेते हैं। और फिर कहते हैं कि ये कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये संक्षेप में, हमको जल्दी कथा पूरी करनी है, हमारे पास आधा घंटा है और एक स्कंद पूरा करना है। अब कहें परीक्षित महाराज को कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा करने का प्रसंग आया तो शिशुपाल गालियां देने लगा कि ये ग्वाला है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसी की पूजा करोगे, और कोई आपको मिला नहीं, भीष्म की पूजा क्यों नहीं करते हो, व्यास की क्यों नहीं करते हो। तो उस वक्त 100 गालियां पूरी हुई तो भगवान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन कटा और वो भगवान के चरणों में प्रवेश उसकी आत्मा ने किया। ये देख के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि योगियों को ध्यान करने से जो गति नहीं मिलती है वो इस गाली देने वाले द्वेषी क्रोधी शिशुपाल को कैसे मिल गई। तब 5 अध्यायों में कथा आती है कि ये शिशुपाल भगवान के वैकुंठ के दरबान जय और विजय थे, जो पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु हुए। जब हिरण्यकश्यप को वाराह देव ने विदा कर दिया तो हिरण्यकशिपु अपनी माँ को और कहने लगा क्या रखा है, जो जन्म लेता है वो मरता है, और सबको शिक्षा देने के बाद कहता है मैं तपस्या करके अमर बनना चाहता हूं। इसको बोलते हैं असुरी वेदांत। बात वेदांत की कर रहा है लेकिन दूसरों को कहता है सब मरते हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा, और तपस्या करने के लिए चला गया। जब वो तपस्या करने के लिए चला गया उस वक्त इंद्र ने क्या किया, हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपहरण कर लिया। अरे कृष्णा क्या मंदिर जाने, आरती का समय हुआ, अरे बोल 6:30 बजे कीर्तन करते हैं, तो चलो कोई और कर ले। अरे कृष्णा अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सुकयादु हिरण्यकश्यप की पत्नी को इंद्र पकड़ के ले जा रहा था अपहरण करके, नारद ने कहां ले जा रहे हो, स्त्री का अपहरण क्यों कर रहे हो, और भी गर्भवती, बोला जानते नहीं हो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, ये सांप के सपेला इसके पेट में जो है ये पैदा होगा, मार देंगे। नारद कहता है क्या पता कोई महात्मा हो, मेरे आश्रम में छोड़ के जाओ। नारद की आज्ञा का पालन किया। इंद्र ने कयादु नारद के आश्रम में रही और रोज कथा सुनती थी और गर्भ के अंदर प्रहलाद कथा सुनता था, और कयादु को नारद ने वरदान दे दिया कि तेरे को पीड़ा नहीं होगी, तुम्हारा पति आएगा तब प्रसव होगा। और दूसरे तरफ से हिरण्यकश्यप का इतना तप हो गया हाथ ऊपर करके खड़ा है, चमड़ी सारी सूख गई, मांस गया, हड्डी बच गई और आग लगने लगी ऊपर। तब वो ब्रह्मा जी ऊपर से उतर के नीचे आया अपने कलमंडू से गंगा जी का जल का उछड़का और कश्यप के पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए? अब कहता है दंडवत करके, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, 100 साल के बाद मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ता है। बोला नहीं, फिर ऐसे आपके किसी भी पैदा हुए से मैं नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, ऐसे जो भी मरने के कारण थे वो सब पूछ लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया और हिरण्यकशिपु ने आके चारों ओर हाहाकार मचा दिया, ब्राह्मणों का पूजा बंद करा दी, गायों की सेवा बंद करा दी, यज्ञ की अग्नियां बंद करा दी और देवताओं को भयभीत कर दिया। सब देवता भगवान को कहते हैं अब क्या करें, भगवान कहते हैं जिस दिन ये अपने छोटे बच्चे भगवान के भक्त प्रहलाद के ऊपर अपराध करेगा तब इसको मरा हुआ समझना। और परीक्षित महाराज पूछता है अपने बेटे से सब प्रेम करते हैं, बेटे को कैसे मारेगा? तब कथा आती है कि चार बच्चे थे हिरण्यकशिपु के कयादु से, सबसे छोटा प्रहलाद था और पास में गुरु की स्कूल थी और शुक्राचार्य के दो बेटे छंड और अमरक पढ़ाते थे और प्रहलाद वहां पढ़ने गया। कुछ दिनों के बाद वापस आया, पिताजी ने गोद में बिठाया, बोला बेटा क्या सीख के आयो? बोला पिताजी इस संसार में भागा दौड़ी से अच्छा है कि वन में जाके भगवान विष्णु का शरण लेना चाहिए। हंसने लगा कि अरे ये हमारे शत्रु विष्णु के दूत हमारी पाठशाला में हमारे बच्चों को खराब करने आ रहे हैं, लगता है इतना नया बच्चा है इसको क्या पता विष्णु कौन है। अरे पाठशाला के चारों ओर ऐसी कड़ी सिक्योरिटी लगा दो कि कोई विष्णु का आदमी घुस ना पाए, अरे संभाल के पढ़ाना, भेज दिया वापस। और छंड और अमरक ने कहा हमने तो आपको ये नहीं पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था? बोला जो चबे हुए को चबाते हैं उसमें रस कभी नहीं आता है और अपने प्रयास से कुछ नहीं होता है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है वही सीख सकता है। उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद फिर वापस घर आया प्रहलाद छुट्टी में, माँ कयादु ने श्रृंगार करके पिता की गोद में बिठाया, पिता ने कहा अब क्या पढ़ के आयो? तब तो भक्ति के 9 अंग बता दिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वो कहता है ये तो विष्णु के तरफ चला गया है, ये जिंदे रहने का अधिकारी नहीं है, इसको मार दो, इसने कैसे, इसने ये किसने सिखाया है, जाओ कैसे भी मार दो, ये हमारे कुल का घातक है, ये तो दुश्मन से मिला हुआ है। अरे प्रहलाद को मारने के लिए सब यत्न किए, पहाड़ से फेंका, हाथी के पांव के नीचे विष दिया, आग में जलाया, समुद्र में कहीं भी नहीं मरे। अब तो परेशान हो गया हिरण्यकशिपु के, ये मर क्यों नहीं रहा, किसने तुमको ये सिखाया? बोला पिताजी ये ऐसे समझ में आने वाली बात नहीं है, कोई साधु कृपा करता है तब ये बातें समझ में आती हैं, उत्तर सही दिया नहीं। तब संड और अमरक ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हमारे पिताजी आएंगे इसको सिखा देंगे, अब हम ले जाते हैं। ले गए वापस। देखो दोनों को जवाब नहीं दिया प्रहलाद ने। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना अश्रद्धालुओं को मेरी शिक्षा मत देना। प्रहलाद महाराज एक हिरण्यकशिपु अश्रद्धालु, दूसरे चंडो रण, इन दोनों को नहीं बताया कि मेरे को किसने बताया। बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर छंड और अमर गए अपना भोजन खाने, दोपहर को सब बच्चों को कहता है हे असुरों के बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए, वो भगवान जो सबका स्वामी है वो भगवान के अलावा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ज्यादा प्रयास कमाने का करने की जरूरत नहीं है, जो भाग में सुख है वो ऐसे मिलते हैं जैसे दुख बगैर बुलाए आ जाते हैं, तो बेकार का प्रयास अति करना नहीं चाहिए, कोई दुख के लिए थोड़ी प्रयास करता है, फिर भी सबको दुख आता है, बीमारी आती है, ऐसे सुख भी हमारे कर्मों के अपने आप आ जाते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। आओ आओ कीर्तन करें। और सब कीर्तन करने लगे और रोटी खा रहे थे दोनों संड और अमरक। बोला ये कीर्तन का आवाज कहां से आया, भाग के देखें तो पूरी क्लास प्रहलाद के साथ खाई। और प्रहलाद के बच्चों ने पूछ लिया कि हमारे गुरु ने तो हमको बताया नहीं, ये किसने तुमको सिखाया है? अब इन बच्चों को श्रद्धा थी। प्रहलाद बोलते हैं भगवान नारायण का शिष्य नारद मेरा गुरु है, जब मेरी माँ उनके आश्रम में रही थी तो मैंने सारी कथा भागवत धर्म की सुन ली थी, लेकिन मेरी माँ को वापस घर में आने के बाद भूल गई, लेकिन मैंने अभी मुझे याद रखी है। तो इन बच्चों को बता दिया प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु को नहीं बताया, न हिरण्यकशिपु को बताया और न ही छंड और अमरक को बताया, लेकिन बच्चों को बता दिया। अब तो ये भागते हुए बोला महाराज हमसे संभलने वाला नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारे अंदर ये शक्ति आई कहां से? बोला जिस जहां से आपकी शक्ति आ रही है वहां से सबकी शक्ति आ रही है, वहीं भगवान विष्णु सर्वव्यापक है, उसकी शक्ति है। बोला कहां है तेरा विष्णु? बोला कहां नहीं है। बोला क्या इस खंभे में है? वो जब ऐसे उंगली की इस खंभे में है तो भगवान सावधान होकर उस उंगली को देखते हुए कहते हैं अगर मेरा प्रहलाद को तो मैं दिख जाऊंगा, और वो हां कह देगा, वो हां कह देगा तो मेरे को यहां से निकलना पड़ेगा। और किस खंभे में? प्रहलाद ने कहा हां इस खंभे में भी है, मैं देखता हूं तेरे भगवान को। खंभे को जैसे मारा खंभा फट गया और अंदर से नरसिंह देव भगवान की। तो भगवान नरसिंह देव ऐसे ऊपर का हिस्सा शेर जैसा, नीचे का हिस्सा मानव जैसा निकले, हिरण्यकशिपु को पकड़ा और थोड़ी देर खिलवाड़ किया, और गरुड़ जैसे सांप के साथ करता है। फिर जब शाम का समय हुआ, न रात है न दिन है, न अंदर है न बाहर है, और जब देखा कि पुरुषोत्तम का महीना है, 12 महीनों में है नहीं, तब उठा के उसको न ऊपर न नीचे रखा अपनी गोद में, और न अस्त्र न शस्त्र नाखून से चीरा फाड़ा और उसकी अत्रियों की माला पहन ली। तब सब देवता आ गए। ब्रह्मा जी कहता है आपने बड़ा हमारा उपकार किया, और क्रोध ज्यादा बढ़ गया। शंकर जी प्रार्थना की, इंद्र ने प्रार्थना की, लक्ष्मी को कहा कि जरा शांत करके देखो। लक्ष्मी गई तो भी भयभीत होके पीछे हट गई कि आज इनका मूड ठीक नहीं है। तब सबने प्रार्थना की कि प्रहलाद तुम्हारे लिए प्रकट हुए, जाओ इसको प्रार्थना करो। और प्रहलाद महाराज ने जाके प्रणाम किया है, हिरण्यकशिपु ने उठा के गोद में बिठा दिया है और चाटते हुए कहते हैं बेटा तुमने कितने कष्ट सहे, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करना। और प्रहलाद महाराज को खुश देख के हरदाम और हिरण्यकशिपु कैसे देखने लगे, अरे इसको मेरे से ज्यादा खुशी हो रही है, भक्त मेरी गोद में है, मुझे खुशी होती है, इससे ज्यादा तो भक्त को खुशी हो रही है। तब भगवान ने विचार कर लिया कि बच्चा जब माँ बाप की गोद में बैठता है तो उसको बड़ा सुख मिलता है। भगवान ने कहा इस जन्म में तो मेरे पीछे खंभा मेरा माता पिता है, अगली बार जब मैं प्रकट होऊंगा तो मेरे भक्तों को माता पिता बनाऊंगा, और फिर एक माता नहीं तीन तीन, कौशल्या सुमित्रा और केकई की गोद में राम जी प्रकट हुए, तब उनका आनंद लिया। सो यहां अब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करने लगे कि भगवान मैं असुर बालक हूं, मैं जानता हूं कि न धन से आप राजी होते हैं, न तप से राजी होते हैं, न किसी विद्या से राजी होते हैं, आप तो शुद्ध भक्ति से राजी होते हैं, और आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, भगवान का वरदान मांग लो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भक्ति करूं उसके बदले वरदान मांगू, ये तो बनिए वाला काम हो गया कि चीज दे के चीज लो। नहीं नहीं, भक्ति मैं करूं, अगर आपको वरदान देना है तो मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा न हो, ये वरदान दे दीजिए। हिरण्यकशिपु का वध हो गया, असुर सब शांत हो गए, भगवान हिरण्यकशिपु के सिंहासन के ऊपर बैठ गए, और फिर कहा प्रहलाद अब तुमको यहां राज करना है। अब प्रहलाद कहता है मुझे एक वरदान दे दो। बोला अब क्या वरदान चाहिए? बोला मुझे वरदान ये चाहिए कि मेरा ये पिता आपका बड़ा द्वेषी था और आपसे बड़ा ईर्ष्या करता था, इसका उद्धार कर दो। भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम्हारा पिता एक नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ी आगे पीछे, मैं किसी को मारूंगा नहीं और सबका उद्धार हो जाएगा। एक भक्त होता है तो सब पीढ़ियों का उद्धार होता है। और यहाँ प्रहलाद के चरित्र की महिमा उसका गुरु नारद गा रहा है। शिष्य गुरु की महिमा गाए बड़ी बात नहीं है, गुरु शिष्य की महिमा गा रहा है। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने सभ्य मानव समाज के लिए नारद जी से प्रश्न पूछे हैं, और गृहस्थ आश्रम के लिए पूछा है कि गृहस्थी कैसे सुखी रहे, और उसके उत्तर में कहा है कि गृहस्थी को हरे हमेशा हरि कथा सुननी चाहिए, हरि भक्तों का संग करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और अवस्था के आवश्यकता से अधिक धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यहां सातवें स्कंद को पूर्णाहुति के पहुंचाते हैं। आठवें स्कंद के अंदर मनवंत्रों का वर्णन है, और मनवंत्र का मतलब है भगवान का शासन, हर मनु कोई सद्वासना चलाता है। तो इसमें तीन प्रसंग है और तीन उद्देश्य है। पहला प्रसंग ये है कि जब संसार में संकट हो, दुख हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, तब भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, और इस प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। फिर 10 अध्यायों में जब भगवान सब कुछ हमारी सहायता करके दे दे तो जो कुछ भी है वो दान कर देना चाहिए, ये दान का प्रसंग है, समुद्र मंथन, खीर सागर के मंथन का। फिर 9 अध्यायों में जीवन में कभी कोई वचन करे तो उस वचन की पालन करना चाहिए, इसमें बलि का चरित्र है। और 1 अध्याय में सत्यव्रत के हाथ में स्नान करते हुए मच्छी आती है और मछली शरण में रहना चाहती है, वो आगे चल के मच्छ अवतार होते हैं, ये भी शरणागत रक्षा का 1 अध्याय है। ऐसे 8वां स्कंद इस प्रकार से है। तो तीन अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र कौन था, इंद्रद्युम्ना नाम का एक राजा था, राजपाट छोड़ के तपस्या करने गया, अगस्त ऋषि के आने के ऊपर उठा नहीं, तो अगस्त ऋषि का हाथी की तरह जड़ हो गया, सम्मान नहीं करता, जा हाथी बन जा, तो उसकी भक्ति आधे में रह गई और वो हाथी बन गया। जब वो हाथी बन गया तो बहुत बड़ा गजेंद्र ऐसा हाथी के शेर भी उससे डरे, बड़ी हथनियां बचे और त्रिकूट पर्वत की तलहटी में सरोवरों में नहाते हुए एक सरोवर में चला गया। मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया, कोई सहायता कर नहीं पाया, मगरमच्छ था जल में उसका शक्ति बढ़ रहा था, हाथी था जमीन के रहने वाला उसकी शक्ति कम हो रही थी। और ऐसी स्थिति में गजेंद्र को अपनी प्रार्थना याद आ गई जो वो इंद्रद्युम्न के भक्ति में कर रहा था। उसने कहा हे गोविंद तू ही रक्षा कर, गो शब्द तो कहा तब भगवान वैकुंठ में थे और विंद कहने से पहले गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए और सुदर्शन चक्र से पहले दोनों को पहले खींच के बाहर निकाला, फिर मगरमच्छ का गर्दन कटा, पांव इसका आजाद हुआ, मगरमच्छ के शरीर के अंदर से दिव्य ज्योति निकली और एक बहुत सुंदर गंधर्व निकल के ऊपर जाने लगा। गजेंद्र ने कहा महाराज प्रार्थना मैंने की, उधार उसका कर दिया। बोला मेरे भक्त के चरणों को जो पकड़ता है उसका उधार पहले करता हूँ, भक्त की बारी बाद में, आप भक्त हैं। वैसे ये हु नाम का गंधर्व है और इसी ने एक बार देवल ऋषि को स्नान करते हुए डुबकी लगा के पांव को पकड़ा था, उसने बोला मगरमच्छ की तरह क्यों कर रहा है, जा मगर बन जा, फिर हाथ जोड़ के कहा बोला भगवान विष्णु तेरा उद्धार करेगा। और फिर गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वालों को भी संसार के अंदर दुख तकलीफ नहीं आएगी, व्यास देव ने ऐसा श्रुति फल लिखा है। लेकिन इस गजेंद्र मोक्ष से ये सीखना चाहिए कि संसार के अंदर हम भी काल रूपी मगरमच्छ ने हमारे पांव को भी पकड़ के रखा है, हम भी कोई 25 साल कोई 50 साल काल के गाल में चले गए हैं, ये काल का शक्ति बढ़ता जाएगा हमारा शक्ति कम होता जाएगा, इसलिए अभी से गोविंद के गुण गाना शुरू करना चाहिए कि भगवान हमारी बार बार काल के मुख में जाने से रक्षा कर ले। और इसके बाद प्रसंग ये आता है कि इंद्र एक दिन हाथी के ऊपर चढ़ के जा रहा था तो सामने दुर्वासा ऋषि के गले में सुंदर माला थी, उन्होंने इंद्र को माला पहना दी और इंद्र ने माला को उतारा और हाथी की सूंड में डाल दी और हाथी ने सूंड से नीचे पांव में दबा दी। दुर्वासा ऋषि कहता है प्रसाद की माला का अपमान कर दिया, जड़ हाथी को दे दी। ये माला जब भगवान के गले से उतर के ये भागवत को जैसे छुआ के पहनाते हैं तो ये तो भगवान का प्रसाद है, जब तक गले में है तो मृत्यु भी नहीं आ सकती, बहुत बड़ी बात है, इसका अपमान करना बहुत खराब है। और कहा इंद्र तुम श्री हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, इंद्र का इंद्र पद चला गया, बलि महाराज ने इंद्रासन के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र वहां से इंद्रासन ही चला गया। अब यहां प्रश्न ये आता है कि इंद्र ने जाके भगवान से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। बोला आप संधि कर लो दैत्यों के साथ और समुद्र का मंथन करो, मैं आपको अमृत पिलाऊंगा। तो फिर बलि महाराज और उनकी आपस में संधि की, समुद्र मंथन का, खीर सागर का मंथन हुआ और मंद्राचल पर्वत को भगवान ने सहायता करके उठाने में वासुकी सांप उसकी रस्सी बनी और खीर सागर के अंदर मंथन, एक तरफ मुंह की तरफ असुर खड़े हुए, पूछ की तरफ देवता खड़े हुए और जोर से मंथन हुआ तो उस मंथन में नीचे धुसने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार लेके उसको सहारा दिया, ऊपर से भगवान ने पकड़ लिया और फिर पहले कालकूट विष निकला, सबने हाहाकार किया। तब कहा शंकर जी को प्रार्थना करो, पार्वती से पूछ के शंकर जी ने हित करने के लिए आए और विष को पान किया और सबकी रक्षा कर दी। देखिए पर उपकार के लिए विष पीने के बाद भी शंकर नीलकंठ बन गए, लेकिन चोरी छुपी राहु अमृत पीने के बाद भी गर्दन कटवा दिया। तो अर्दन पे गर्दन कटता है अमृत पीने के बाद भी नहीं कुछ होता, और विष पीने के बाद भी पूजा होती है। अब शंकर जी ने कहा जीभा में तो राम नाम चलता रहता है, यहां तो विष रख नहीं सकता, हृदय में तो भगवान विराजमान है वहां तो रख नहीं सकता, तो कंठ में यहां अटका दिया, उनका नाम नीलकंठ हो गया। उसके बाद 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, उसमें से मुख्य 3 है, लक्ष्मी निकली जिसने भगवान विष्णु का वर्णन किया, और गाय निकली सुर भी जो दे दी ऋषियों को, और तीसरा रतन अमृत निकला जो कलश लेके धन्वंतरी निकला, और चंद्रमा निकला, अप्सराएं निकली वो स्वर्ग में गई, वरुणी निकली वो दैत्य ले गए, हाथी निकला इंद्र ने लिया, घोड़ा निकला उचई शर्वा वो बलि महाराज ने लिया, तो ऐसे और रतन भी निकले, 14 रतन निकले, 3 मुख्य थे। अब समुद्र, अब जब कलश निकला तो दैत्य लेके भागने लगे, फिर मोहिनी मूर्ति भगवान ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और असुरों ने कहा कि आप हमारे को बांट के पिलाइए, उन्होंने ले लिया, दोनों को बिठाया और देवताओं को सारा अमृत पिला दिया, और बीच में जाके बैठ गया राहु, तो उसका सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा, उसका गर्दन कट गया। अब तो सारे असुर और देवताओं के बीच में महासंग्राम हो गया, देव असुर संग्राम हो गया। देवताओं ने भगवान का धन्यवाद नहीं किया, अमृत कुछ काम नहीं दिखा रहा है, फिर भगवान का धन्यवाद किया, भगवान आए, देव असुर भारी संग्राम हुआ, इसमें बलि महाराज मर ही चुके थे, उसको उठा के ले गए। इस बीच में शंकर जी के मन में मोहिनी मूर्ति रूप देखने की इच्छा हुई, उन्होंने भगवान को मोहिनी मूर्ति रूप देखने के लिए कहा, भगवान सुंदर लो और पार्वती के साथ आए, और भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप दिखाया, और संतर और शंकर जी के शक्ति का हास हुआ, ऋषियों के आश्रमों से भाग के आए और शांत खड़े थे। भगवान ने कहा आप तो आत्माराम हो, लेकिन इन संसार के ऋषि मुनि ब्रह्मचारियों को शिक्षा देनी थी कि भगवान की माया से शंकर मोहित हो सकता है, तो ऋषि मुनियों को सावधान होना चाहिए, लेकिन शंकर जी इस शक्ति से आगे चलकर सप्त ऋषियों ने वायु देव के द्वारा राम अवतार में हनुमान का अंश, शंकर का अंश हनुमान के उत्पत्ति का कारण बना। अब बलि महाराज मर ही चुके थे, लेकिन भृगुवंशी ब्राह्मणों को संजीवनी विद्या आती थी, उन्होंने उसको जीवित कर दिया, और जीवित करने के बाद आपको विश्वजीत यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ कराया, यज्ञ के अंदर से रथ निकला, धनुष निकला और बाण निकले अक्षय, प्रहलाद महाराज ने प्रकट होके माला पहनाई कमल की न मुरझाने वाली, और गुरु जी शुक्राचार्य ने शंख दिया, अब आक्रमण किया स्वर्ग के ऊपर, और स्वर्ग में से देवता भाग गए, अपने गुरु ने कहा भाग जाओ, इस वक्त ब्राह्मणों की रक्षा में बलि महाराज आ रहा है। बलि महाराज इंद्र के आसन के ऊपर बैठ गया। अब भृगुवंशी ब्राह्मण कहते हैं, बलि महाराज आप इस वक्त अवेद्य इंद्र आसन पे बैठे हो, हम आपको 100 यज्ञ कराते हैं, फिर आप इंद्र बन सकते हो। तो जहां बरूच है कच्छ, जो गुजरात में जिसको बरूच आजकल कहते हैं, इसको भृगु कच्छ कहते हैं, वहां नर्मदा के किनारे यज्ञ शुरू किया। 99 यज्ञ पूरे होने को लगे, तब आदित्य देवताओं की माता कश्यप को कहती है, मेरे बेटों को दिखे को बहुत दिन हो गए हैं, हमारे बेटों की रक्षा कैसे हो। कश्यप कहते, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के समय मुझे पयोव्रत बताया था, दूध पीना है केवल, और 12 दिन में आपकी भगवान इच्छा पूरी करेगा। पयोव्रत पूरा किया, भगवान प्रकट होके कहते हैं, आदित्य तुम कश्यप में मेरा ध्यान करो, मैं तेरे घर में प्रकट होऊंगा। इस वक्त मैं इंद्र की तरफ से असुरों से लड़ नहीं सकता, क्योंकि असुर ब्राह्मणों की रक्षा में है और धर्म के मार्ग में है, परंतु आपकी की हुई भक्ति को भी मैं निष्फल नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, मैं इंद्र का छोटा भाई बन जाऊंगा, फिर अपने भाई की रक्षा कर सकता हूं। समय आने के ऊपर कश्यप और आदित्य के घर में भगवान वामन देव का प्रकट हुआ। वामन कहते हैं, छोटे को बटु ब्राह्मण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, सबके देखते देखते छोटे वामन बन गए, और सूर्य देव ने गायत्री दे दी, गुरु बृहस्पति ने उसको पहना दिया जनोई, पिताजी ने जनोई पहना दी कश्यप जी ने, और माँ दुर्गा ने भिक्षा मांगने का पात्र दे दिया, और छाता वरुण ने दे दिया, और कर्मंडलू उठाया है, और बलि के यज्ञशाला में पहुंच गए हैं। सब बले सब पुरोहित कहते हैं, ये प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, सूर्य तो सुबह उग गया, ये दूसरा सूर्य निकल रहा है, देखते हैं बहुत चमकता हुआ नौजवान बच्चा है, छाता हाथ में लिया हुआ है, कर्मंडलू है, मृगशाला पहनी है, पृथ्वी ने दी है। और इस बच्चे को देख के बलि महाराज कहते हैं, हम धन्य हैं आप जैसे ब्राह्मण हमारे यज्ञशाला में आए, और उनका पांव धोने लगा। जो गंगा भगवान के चरण धोने के बाद पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में गिरती है, फिर दुरुलोक में गिरती है, फिर शंकर की जटाएं में गिरती है, और उस गंगा को हम पान करते हैं तब कहते हैं गंगा जल पी लिया। उसी भगवान के पांव के अंगूठे को हाथ से बलि महाराज धोके वो चरण को चरणामृत पी रहा है और सर पे लगा रहा है, कितना भाग्यशाली बलि है। और कहता है ब्राह्मण तुम आए हो क्या मांगो, मांग लो, बलि के बाद एक बार मांगने के बाद दोबारा मांगना नहीं पड़ता है। अब वामन देव कहते हैं, दूसरा नाम है उपेंद्र, कहते हैं आपका वंश कितना बड़ा है, आपके पिता विरोचन से किसी ने आयु मांग ली, ब्राह्मणों को आयु दे दी, आप बड़े उधार हैं, आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। उनकी बड़ी प्रशंसा किया और फिर कहा कि मुझे चाहिए केवल 3 पग जमीन। ओ बलि महाराज हंसने लगा, छोटा बच्चा है, बात तो बड़ी विद्वानों की करता है, मांगना आता नहीं है, बोलता चाहिए भी 3 पांव और वो चाहिए भी मेरे पांव से नाप से, तुम्हारा इतना छोटा पांव है क्या मिलेगा। वामन देव कहते हैं बड़े बड़े राजा पृथु और गया जैसे कभी उनका दिल पूरा भरा नहीं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, कुछ नहीं मिले मिले उसमें संतोष होना चाहिए, मेरे को 3 पग जमीन दो और संकल्प कर लो। बलि महाराज संकल्प करने के लिए लगे, उसके गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं महाराज ये विष्णु है आपको छल कर रहा है, सब कुछ ले लेगा, आप मत दीजिए, अभी आपने ओम का उच्चारण नहीं किया है। बलि महाराज कहते हैं गुरुदेव अगर विष्णु है तो मेरे दरवाजे पे मांगने आया है ना, मैं देने वाला हूं ना, मैं जानता हूं पृथ्वी कहती है वचन तोड़ने वाले का मैं भार नहीं उठा सकती हूं, मुझे चाहे नरक में जाना पड़े चाहे पाताल में जाना पड़े लेकिन मैं अपने वचन से अब जो मैं कह दिया है मैं तो इनको 3 पग जमीन दूंगा। और उन्होंने संकल्प कर दिया और उस वक्त छोटे वामन त्रिविक्रम बनने लगे, बड़े पहले पांव में सारा पृथ्वी मामपली, दूसरे पांव में सूतल, ऊपर के सत्य लोक से पांव ऊपर गया और अंगूठे सीधे पांव से ब्रज नदी के अंदर का जल पांव धो के नीचे गिरा, गंगा जल उसका नाम हो गया। अब कहते तीसरा पांव कहां रखूं, बड़े दानी बन रहे थे, अब बताओ कहां रखूं तीसरा पांव, बांध दो इसको, वरुण पास से बांध दिया। बलि महाराज कहता है महाराज मैंने मेरे बाहुबल से इस धरती का राज कमाया था, मैंने मेरे यज्ञ से स्वर्ग आदि का राज कमाया था, लेकिन दोनों को कमाने वाला मैं तो अभी बैठा हूं ना, ये मैंने मेरे इस सर की बुद्धि से कमाया था, ये मैं अपना सर मेरा अहम जो बच गया है ये मैं आपको अर्पण करता हूं, आप अपना तीसरा पांव मेरे सर के ऊपर रखिए, ये बाली का समर्पण है। भगवान बाली के सर के ऊपर चरण रखे, कितना भाग्यशाली बाली है। उस वक्त उसकी पत्नी विंध्यावली कहते हैं पतिदेव शरीर भी तो आपका नहीं है, तब नारद, तब उनका दादा प्रहलाद प्रकट होता है और प्रहलाद कहता है भगवान आपने अच्छा किया, हम असुर आपकी चीजों को हमारा मानते हैं, अच्छा किया आपने वापस ले लिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान वामन देव बलि ने सर्वस्व आपको दे दिया, अब तो नाग फांस से आप, अब तो इसको वरुण फांस से मुक्त कीजिए। उस वक्त भगवान कहते हैं बलि ने कुछ मुझे दिया नहीं है लेकिन बलि ने मुझे खरीद लिया है, अब बलि महाराज मैं तुम्हारे दरवाजे के ऊपर चौकीदार बना हो रहूंगा, आप आराम से मेरा दर्शन करते रहना, तुम परीक्षा में पास हो गए। बलि महाराज आत्म निवेदना भक्ति के 9वें अंग का उदाहरण है और ये बलि के अंदर से आवाज जो निकला ना हमारी भाषा में आ गया बलिदान, बलिदान करना मतलब सब कुछ अपना दे देने को बलिदान कहते हैं, ये तो हमारा पर्यायवाची शब्द हो गया बलिदान। तो ये बलिदान बलि महाराज ने दिया है और फिर भगवान ने कहा कि अब तुम सूतल लोक में जाके रहो और प्रहलाद इनके साथ जाके इनको संग देना और मैं वहां आपके दरवाजे पे रहूंगा, अगले मनवंतर में आपको इंद्र बनाया जाएगा। और ये कहने के बाद भगवान बलि महाराज के वहां चले गए। लक्ष्मी परेशान होने लगी कि पतिदेव कब से गए हैं वापस नहीं आए, सूतल लोक में गई, ब्राह्मणी बन गए, बोला दान चाहिए, बलि महाराज ने कहा जो मांगो मैया, बोला संकल्प कर लो, बोला संकल्प तो पहले भी किया, बोलिए केवल ये पति है मेरा, तो 6 महीने आज भी भगवान विष्णु बलि महाराज के वहां दरबान होके खड़े रहते हैं और 6 महीनों वापस चले जाते हैं देव उत्थान में। तो ये बलि महाराज का चरित्र, सर्वदान करने का, आत्मसमर्पण का, भगवान वामन देव भगवान की। तो यहाँ हम वाणी को विराम देते हैं, एक प्रसंग बचता है उसको कल कह के फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के भागवत